हमारी कला और संस्कृति की, विश्व कल्याण के निमित्त ईश्वरीय सेवाओं की गरिमापूर्ण यात्रा को आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इसी सिल्वर जुबिली के इस फिनाले के निमित्त हम सभी कलाकारों के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस यात्रा के दौरान हमारी कला और संस्कृति विभाग के द्वारा देश विदेश में अनेक कलाकारों को प्रभु पिता का ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा अनेकानेक कलाकारों ने अपनी कला में मूल्यों का समन्वय करके प्रभु पिता की दिव्य शक्तियों का अनुभव करके समाज को भी बहुत कुछ बहुमूल्य योगदान दिया है। और अब हम आशा करते हैं कि ये यात्रा हमारी और भी तीव्र गति से आगे बढ़ती जाए, ताकि हमारे अनेकानेक कलाकारों को प्रभु पिता का ईश्वरीय संदेश प्राप्त हो, जिसके द्वारा हम समग्र विश्व को बेहतर बनाने का कार्य जल्दी से संपन्न कर सके। इसी महान उद्देश्य को लेकर ये संस्कृति ये प्रभाग कार्य करता है। प्यारे शिव पिता की याद को साथ लेकर अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे मंच पे उपस्थित सभी मेहमानों का सबसे पहले हम पुष्पों के द्वारा और बैचेस लगा के स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। तो मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि हमारे मेहमानों का अभिवादन करेंगे। हमारे बीच में हमारे मुख्य मेहमान भी आ चुके हैं, कवि प्रदीप चौबे। आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हम सभी कर्तर ध्वनि से आपका अभिवादन करेंगे। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है। परम कलाकार शिव पिता के घर में चारों ओर से पधारे हुए हमारे कलाकार भाई बहनों के द्वारा हमारा ये सभागृह बहुत सुंदर रीति से सुशोभित हो रहा है। और साथ साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मधुरवाणी ग्रुप को भी, क्योंकि हमारी संस्कृति एक कला संस्कृति है, जहाँ पर हम अपनी दिल की भावनाओं को और खुशी को कला के माध्यम के द्वारा ही जाहिर करते हैं। तो हमारे मधुबन के मधुरवाणी ग्रुप को मैं आमंत्रित करती हूँ कि अपनी मधुरवाणी की कला के द्वारा पधारे हुए मेहमानों का अभिवादन करेंगे। मधुरवाणी ग्रुप में आमंत्रित करती हूँ हमारे ब्रह्मा कुमार सतीश भाई, ब्रह्मा कुमार भानु भाई और ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी। आप सभी यहाँ पर ही इस विश्वविद्यालय के मुख्यालय में समर्पित होकर के अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और साथ साथ अपनी मधुर वाणी के द्वारा अपने सुंदर भावों का अभिवादन भी करने की सेवाएं दे रहे हैं। तो अभी मधुर वाणी ग्रुप प्रभु पिता के इस दिव्य संदेश को हमारे सामने रखेंगे कि किस उद्देश्य को लेकर आज हमारी ये संगोष्ठी होने जा रही है और किस महान उद्देश्य को हमें जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। इसी भावों को लेकर अभी आमंत्रित करती हूँ मधुर वाणी ग्रुप ब्रह्मा कुमार सतीश भाई, भानु भाई और रमेश भाई जी।
ओम शांति। आप सबका कला एवं संस्कृति प्रभाग की रजत जयंती समारोह के समापन समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है।
उद्घाटन
परमात्म शक्ति की प्राप्ति का सर्वोत्तम यही समय है। मूल्यनिष्ठ कला और संस्कृति अभी ही होनी तय है। सत्कर्म करें पर अभी करें, सांसों का भरोसा कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये शिव का शुभ संदेश है। स्वागत करता अखिलेश है। आप अपने अभिनंदन में एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत स्वीकार करें।
शक्ति की प्राप्ति का सर्वोत्तम यही समय है। परमात्म शक्ति की प्राप्ति का सर्वोत्तम यही समय है। मूल निष्ठ कला संस्कृति, मूल निष्ठ कला संस्कृति अभी ही होनी तय है, अभी ही होनी तय है। सत्कर्म करें पर अभी करें, सांसों का भरोसा कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। शिव का शुभ संदेश है, स्वागत करता अखिलेश है। शिव का शुभ संदेश है, स्वागत करता अखिलेश है। महापरिवर्तन की पावन वेला आई है, परम पिता ने परिवर्तन की फिर धुंधुली बजाई है। ओ आत्म परिवर्तन से होगा विश्व परिवर्तन, संसार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। वो देखो स्वर्णिम संस्कृति का हो रहा सूर्य उदय है, हो रहा सूर्य उदय है। परमात्म शक्ति की प्राप्ति का सर्वोत्तम यही समय है। परमात्म शक्ति की प्राप्ति का सर्वोत्तम यही समय है।
आप तालियों से अभिनंदन भी करते जाएं।
आतिथ्य में अरावली आरती है उतारती, स्वागत करती मूल्यों की माला ले माँ भारती। आओ कला से भला करें, करें जगत कल्याण, और सुकृति से संस्कृति का करते चले उत्थान। साथ स्वयं भगवान हमारे अपनी सदा विजय है, अपनी सदा विजय है। परमात्म शक्ति की प्राप्ति का सर्वोत्तम यही समय है। परमात्म शक्ति की प्राप्ति का सर्वोत्तम यही समय है। प्रभु कलाकार करता कलाकारों का अभिनंदन, मन मोहिनी वन में सुंदर सा रचा है ये आयोजन। प्रभु पिता है दादी माँ है ये अपना परिवार, अपने घर में आप पधारे स्वागत सौ सौ बार। वर्षा में फूलों की वर्षा करता आज हर हृदय है, आज हर हृदय है परमात्मा शक्ति की प्राप्ति का सर्वोत्तम यही समय है। मूल निर्कला संस्कृति अभी ही होनी तय है, अभी ही होनी तय है। कर्म करें पर अभी करें, सांसों का भरोसा कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। शिव का शुभ संदेश है, स्वागत करता अखिलेश है। शिव का शिव संदेश है, स्वागत करता अखिलेश है। शिव का शुभ संदेश है, स्वागत करता अखिलेश है।
धन्यवाद हमारे मधुर वाणी ग्रुप का। अपनी सुंदर मधुर वाणी के द्वारा प्रभु पिता के महान संदेश को हमें दिया कि जो करना है अभी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन की इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में नुपुर कला संस्थान से आई हुई कन्याओं को, कुमारी श्रीयम और कुमारी ज्ञानीता, जो अपनी कला के द्वारा सभी का अभिवादन करेंगे। और उसके बीच में मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे, हमारी वर्षा बेन जी का पुष्पों के द्वारा और बैचेस के द्वारा अभिवादन करेंगे। हम सभी करतर ध्वनि से अभिवादन करेंगे। इस सुंदर मंच पर आसित मेहमान और हमारी सभा में आमंत्रित मेहमानों का अभिवादन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ नुपुर कला संस्थान की कुमारी श्रीयम और कुमारी ज्ञानिता को कि अपनी कला के द्वारा अभिवादन करेंगे।
तू हाँ
कुमारी श्रीयम और ज्ञानिता, आपने सुंदर कला के द्वारा अभिवादन किया और इस सुंदर घड़ी का वेलकम भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे बीच में हमारे आदरणीय ब्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार रमेश शाह जी को। आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हो और वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के आप मैनेजिंग ट्रस्टी भी हो। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की शुरुआत से जब इसकी स्थापना हुई उसके निमित्त हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा रहे, उनके साथ साथ आपका अपने युवा काल से ही बहुत बड़ा योगदान रहा ईश्वरीय सेवाओं में। आपने साथ साथ मिलकर के अपनी कुशाग्र बुद्धि और अपने विशिष्ट गुणों के द्वारा इस विश्वविद्यालय के अंदर कई सारी नई ईश्वरीय सेवाओं का आविष्कार किया और इस गति को आगे बढ़ाया। ईश्वरीय ज्ञान को गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कैसे अपने जीवन में अपनाएं और अपनी प्रवृत्ति को श्रेष्ठ प्रवृत्ति बनाएं, इसका आप एक प्रैक्टिकल उदाहरण रहे। आपके साथ साथ आपके युगल ब्रह्मा कुमारी उषा बेन जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपको भी हम इस मौके पर अवश्य याद करेंगे। आपने 2010 में अपने पार्थिव देह का त्याग किया, तब तक की 50 साल की यात्रा में रमेश भाई जी और उषा बेन जी ने साथ मिलकर गृहस्थ में रहकर इस ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में अपनाकर एक ये उदाहरण हमारे सामने रखा कि कैसे मूल्यनिष्ठ जीवन बनाकर हम विश्व सेवा में समर्पित हो सकते हैं। आज जिस मोड़ पे हमारी कला और संस्कृति प्रभाग पहुंची है, इसका मुख्य श्रेय हमारी उषा बहन को जाता है, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प को लेकर के इस प्रभाग की शुरुआत की और सबसे पहले पहले नृत्य नाटिकाएं, गीतों की कैसेट्स, सारे आविष्कार आप दोनों ने मिलकर के किए। रमेश भाई जी एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं, बहुत ही सुंदर आपके लेख हमारी हिंदी ज्ञानामृत मैगजीन में हर मास प्रकाशित होते हैं और उसके आधार पर पवित्र धन की किताब आपने लिखी, जिससे आज लाखों लोगों को कैसे अपने जीवन में अर्थ को पाना है धन को पवित्र बना के कमाना है, उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। रमेश भाई जी, हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो जूरिस्ट विंग है उसके भी आप चेयरपर्सन हैं। स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर, जिसको स्पार्क नाम दिया जाता है, ये स्पार्क विंग के भी आप चेयरपर्सन हैं। आपकी प्रतिभा को लेकर अनेकविध नई नई सेवाओं के आप निमित्त बने हैं। इस विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गॉडलीवुड स्टूडियो, जो हमारे इसी परिसर में है, आपने देखा होगा, जिसमें अनेक प्रकार के सेवाओं के निमित्त ये हमारा गॉडलीवुड स्टूडियो बना है। इसकी विशेषता है कि इसमें HD वर्जन का सारा इस्तेमाल करके किस प्रकार से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा ईश्वरीय संदेश को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य हो रहा है, इस प्रकार ईश्वरीय सेवाओं में आपकी इस विशेषता को लगाकर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे ब्राता रमेश भाई जी को कि आप अपने दिल के भावों को हमारे सामने रखेंगे। रमेश भाई जी,
ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय मेहमान तथा हमारे साथी, सभा के अंदर उपस्थित भी हमारे आर्ट एंड कल्चर विंग के सदस्य और हमारे निमंत्रण पर पधारे हुए सभी मेहमान, अभी तो हम आपको मेहमान ही कहते हैं, और तो हम समझते हैं कि 3 दिन का आपका जो यहां पर मुकाम रहेगा उसके अंदर आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और मेहमान में से आप मालिक बन करके जाएंगे, अर्थात आर्ट एंड कल्चर विंग के एक एम्बेसडर बन करके जाएंगे, और जिसके परिणाम रूप जो है हम चाहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति जो है उसके द्वारा श्रेष्ठ समाज की रचना में आपका पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। बचपन में मैंने जू धर्म जो है उसके स्थापक मोजिस की जीवन कहानी पढ़ी थी, उसके अंदर इन्होंने एक बात कही थी कि कला फक्त कला के लिए होनी चाहिए, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, इस प्रकार से उन्होंने माना हुआ था। और उसके कारण क्या हो गया, कला का जीवन के साथ जितना संबंध होना चाहिए, कला के द्वारा जीवन जितना श्रेष्ठ बनना चाहिए वो नहीं बन पाया, ये हकीकत है। और उसके कारण क्या हो गया, समाज नास्तिक हो गया, और नास्तिक समाज के कारण समाज के अंदर संस्कृति के बदले में विकृति आ गई। तो इस प्रकार से सिद्धांत के अंदर परिवर्तन करने से इस प्रकार की समस्या हो गई। तो यह विश्वविद्यालय मानता है कि आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट नहीं, परंतु आर्ट जो आज का विषय जो है, गॉड रिसीविंग गॉड्स पावर फॉर वैल्यू बेस्ड आर्ट एंड कल्चर, मूल्यनिष्ठ समाज, और मूल्यनिष्ठ समाज के अंदर मूल्यनिष्ठ कला और संस्कृति किस प्रकार से होती है, और इसकी स्थापना अर्थात मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में हमारी कला और संस्कृति विभाग क्या कर सकती है, इस विषय के बारे में हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि कला जीवन के लिए है, कला के अनेक क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र ये बढ़ाते हैं बढ़ेता है, जैसे कला जो है, हमारे यहाँ कवि भाई साहब बैठे हुए हैं, कला जो है कविता के भी द्वारा भी अपने प्रस्तुति हो सकती है, कला जो है हमारे फिल्म कलाकारों के द्वारा भी जो कला होती है पेश होती है वो भी कला है, स्कूल और कॉलेज के अंदर हम लोगों को धन कमाने की कला सिखाई जाती है, जिम्नेशियम में जाएंगे तो वहाँ शरीर किस प्रकार से तंदुरुस्त रहे बने इस प्रकार की कला सिखाई जाती है। तो हमारे आप जानते हैं श्री श्री रविशंकर आदि जो भी हैं, इन्होंने भी आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला के बारे में दुनिया को समझाया हुआ है। तो इस प्रकार से कला अनेक क्षेत्र के अंदर काम करती है, अनेक क्षेत्र के अंदर मानव समाज को सुखी बनाने का, मानव समाज को शांति समर्पित करने का प्रयत्न करती है। उसी प्रकार से संस्कृति की भी बात है। भारत की संस्कृति के बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। यह विश्वविद्यालय का एक लक्ष्य ये भी है कि जो ब्लाइंड फेज है और जो भ्रांतियां जो है हमारी संस्कृति के बारे में, इस संस्कृति के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का हम प्रयत्न करते हैं। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, सब यही कहते हैं, क्या होता है, राम होता है तो रावण भी था, कृष्ण थे तो कंस भी था, इस प्रकार से कर करके क्या कहते हैं कि समाज में श्रेष्ठ संस्कृति कभी थी ही नहीं, इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। और उसके परिणाम रूप क्या होता है, संस्कृति जो है वास्तव में आदर्श संस्कृति जो है उसका दुनिया के अंदर किसी को ज्ञान नहीं होता है, और समझते हैं कि संस्कृति सदा ऐसी की ऐसी ही आई हुई है। और इसमें भी आप जानते हैं हमारे देश के अंदर जो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के जो किताबें बनी हुई हैं, ग्रंथ बने हुए हैं, उसके अंदर भी कई समस्याएं हैं। और उसके परिणाम रूप क्या होता है कि जो भ्रांतियां जो है वो रह गई है। हमारे महाराष्ट्र के अंदर लोकमान्य तिलक जो है, इन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में बताया कि भारतीय संस्कृति के अंदर परिवर्तन होता रहता है, और इसलिए भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ बनाने के लिए उस जमाने के सतयुग की दुनिया के या तो त्रेतायुग की दुनिया के श्रेष्ठ नायक के रूप में, हीरो के रूप में या हीरोइन के रूप में काम करने वाले थे, उनका ही और उनका चरित्र, उनका जीवन को लेकर के इन्होंने ग्रंथ बनाया। लोकमान्य तिलक कहते हैं कि सबसे पहला ग्रंथ बना भारत नाम का ग्रंथ बना, उसे भारत में से महाभारत बना, फिर महाभारत में भी उस जमाने के व्यास जो है उनके कहने पर वैशंपायन आदि ने और उसको विस्तृत किया, करते करते आज का स्वरूप जो है महाभारत वो उस प्रकार से आ गया। फिर 8वीं सदी के अंदर जो हमारे ग्रंथ थे जिसके द्वारा हमारी संस्कृति क्या उजागर हो जाए, श्रेष्ठ बन जाए, उसके बारे में लोगों ने अपनी रुचि नहीं बताई, रुचि नहीं बताई, इसके परिणाम लोग क्या हो गया, लोगों ने हमारे लेखकों ने और कवियों ने समझा कि हम ऐसी सुंदर कवि बातें रखे जिसके कारण लोगों का फिर से भारत की संस्कृति को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ हो। और इसलिए 8वीं सदी में वेणी संहारम करके नाटक जो है श्री भट्ट नारायण जी ने लिखा, और उसके अंदर उसकी प्रस्तावना में प्रीफेस में उन्होंने यही लिखा, मैं जानता हूं कि मुझे इतिहास के जो पात्र है, इतिहास के जो चरित्र जो है, इतिहास के जो भी प्रसंग जो है, इन प्रसंगों में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु मैं जानता हूं कि हमारी संस्कृति के जो श्रेष्ठ ग्रंथ है महाभारत रामायण आदि, उसके लिए लोग इतने चिंतित नहीं रहते, इसके कारण मैंने महाभारत को ड्रामे के रूप में, ड्रामा का नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। और इस प्रकार से कला जो है नाटक के रूप में प्रस्तुत होकर के वेणी संहारम नाम का ड्रामा बन गया, और उसके ही अंदर द्रौपदी वस्त्रहरण आदि आदि बातें जो है 8वीं सदी में आई, उसके बाद गीता आई, इस प्रकार से बहुत सी बातें आई महाभारत के अंदर, अनेक प्रकार की गीताएं, 14 प्रकार की गीताएं हैं। कारण यही है कि इन गीताओं के द्वारा इस तरह जो संदेश मिलता है, शुभ संदेश मिलता है, परमात्मा का संदेश मिलता है, वो संदेश इन अनेक प्रकार की बातों के द्वारा श्रेष्ठ समाज की रचना हो सकती है। गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है, इसकी कला, गृहस्थ जीवन की श्रेष्ठ कला के बारे में भी महाभारत में व्याघ्र कथा करके एक कथा है, एक गीता है, और उसके अंदर व्याघ्र कथा के अंदर बहुत सुंदर बातें आती है कि गृहस्थ जीवन किस प्रकार से हो उसको सिद्ध करने के लिए, क्योंकि यह विश्वविद्यालय भी मानता है कि गृहस्थ जीवन जो है श्रेष्ठ जीवन है, और इसके द्वारा ही समाज का हम उत्थान कर सकते हैं, उसके द्वारा ही हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी सुख शांति आ सकती है। तो ये व्याघ्र कथा के अंदर भी एक बात आती है कि सन्यासी महाराज जो है जंगल में थे, वहां पर तपस्या करते थे, एक बार तर्पण कर रहे थे तो ऊपर से कुछ कचरा जो है स्पैरो का, चिड़िया का, वो उसके हाथ में गिर गए तो उसके कारण वो नाराज हो गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने ऐसे ऊपर दृष्टि के द्वारा वो जो चिड़िया थी उसको भस्मीभूत कर दिया। तब उसको लगा कि मेरे पास तो बहुत शक्ति आ गई, सन्यासी जीवन श्रेष्ठ जीवन है इस प्रकार का। और फिर वो शहर में जाते हैं, वहां पर भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो आप जानते हैं सन्यासियों के लिए नियम है कि 5 घर में ही भिक्षा मांगने का अधिकार है, अगर नहीं मिला तो वापस घर में जाते, अपने संगत में जाते हैं और उपवास करना पड़ता है। तो एक माता के घर में गए और उन्होंने माता को कहा भगवती भिक्षां देही। तो माता कहती है मैं ठहरो, मैं आती हूँ। 5-10 मिनट उनको रुकना पड़ा तो सन्यासी महाराज का दिमाग जो है एकदम तेज हो गया। उन्होंने समझा कि ये माता क्या समझती है, मैं कौन हूँ, मैं अपने दृष्टि की शक्ति के द्वारा एक चिड़िया को भी भस्मीभूत कर सकता हूँ। तो जैसे वो माता आई तो उसके सामने अपनी तेजोमय दृष्टि दे करके उसको भस्मीभूत करने का प्रयत्न किया। तब वो माता ने कहा कि महाराज मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं हूँ कि जो आपकी दृष्टि के द्वारा भस्मीभूत हो जाऊं, मैं तो अपना गृहस्थ जीवन जो है अच्छे में अच्छी रीति से व्यतीत करती हूँ और मेरा गृहस्थ जीवन इतना सुंदर है कि मेरा गृहस्थ जीवन जो है आपकी इस प्रकार की दृष्टि के द्वारा ये भस्मीभूत नहीं हो सकता। तब सन्यासी महाराज को लगा ये गृहस्थ जीवन के अंदर रहने वाली माता तो कैसे मालूम पड़ा। तो इन्होंने कहा माता जी आपको कैसे मालूम पड़ा। तो इन्होंने कहा कि मैं तो अभी व्यस्त हूँ, मेरा पति अभी आया हुआ है, मुझे उसके भोजन आदि कराने का है। आप पड़ोस के शहर में जाइए, वहाँ एक व्याघ्र शिकारी जो शिकार करके जो मांस आदि जो बेचता है उसके पास जाइए और उसके पास जा करके वो जो आपसे मिलेंगे और आपको बात करेंगे वो आपको उसके द्वारा गृहस्थ जीवन का श्रेष्ठ महिमा आपको मालूम पड़ जाएगा। तो सन्यासी पड़ोस के गांव में गए, उसने समझाया कि व्याघ्र शिकारी मांसाहार का बेचने वाला वो मुझे क्या सिखा सकता है। तो जैसे वहां गया वो व्याघ्र ने कह दिया कि आइए महाराज आपको माता जी ने भेजा है, मैं आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार से उनको इस प्रकार की ज्ञान की बातें सुनाई, गृहस्थ जीवन की व्यवहार की बातें सुनाई। इस प्रकार से मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के अनेक प्रकार के कार्य, गीता के अंदर भी अर्जुन के सामने भी प्रश्न आया, संस्कृति का प्रश्न आया कि मेरे सामने मेरे पितामह और मेरे सभी गुरु जन आदि जब सब है उसके सामने मैं कैसे कारोबार कर सकता हूँ। और इसके कारण उस समय पर उनको वो मिल गया श्री कृष्ण का सहारा और उसके कारण उन्होंने लास्ट में कहा करिष्ये वचने तव, आपका मैं वचन आपका डायरेक्शन जो है मानूंगा। भारत की संस्कृति के अंदर मानव कल्याण के लिए डायरेक्शन का कारोबार है। पश्चिम की दुनिया में शेक्सपियर जो है उसने भी ड्रामा लिखा है हेमलेट का, हेमलेट के सामने भी यही प्रश्न था टू बी और नॉट टू बी। इस प्रकार से टू बी और नॉट टू बी पर वहां कृष्ण जैसा हेमलेट को ज्ञान सुनाने वाला, मार्गदर्शन देने वाला और आदर्श संस्कृति बनाने वाला कोई नहीं था। और उसके परिणाम रूप भारत की कृष्ण और अर्जुन और पश्चिम की दुनिया की संस्कृति का हेमलेट का जीवन इस प्रकार से अलग अलग विरोधाभास के रूप में कैसे रहता है वो सीखने की और समझने की बातें है। हर एक प्रकार की बातें भारत की संस्कृति में होता है। जब विश्वविद्यालय के अंदर हमने आपको बताया कि और हमारी बहनें भी आगे बताएंगी, आज सुबह भी योग में आपको बताया होगा कि परम कलाकार जो है परमात्मा है, परमात्मा ने सृष्टि की रचना कैसे करी उस प्रकार की बातों के द्वारा वो श्रेष्ठ कलाकार की हम कलाएं कैसे हैं, हम उसकी भुजाएं कैसे हैं, हम उसकी रचना कैसे है वो हम सबको सिखाते हैं। कलाकार की दुनिया के अंदर हम उनको बड़ी भाषा में कहते हैं कल को आकार देने वाले वो है कलाकार। ऐसी प्रकार से जो अदृश्य है उसको दृश्यमान करना, जो खाली विचारों में है उसको व्यवहार में रखने के लिए जो कल्पना कर सकते ऐसी जो है उसकी कला को दुनिया सम्मान भी करती है। आज पश्चिम की दुनिया के अंदर माइकल एंजेलो आदि आदि अनेक प्रकार के रफाइल इस प्रकार के कलाकार हो गए 400-500 वर्ष पहले, फिर भी आज भी उनकी कला को लोग पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं। हमारे माउंट आबू के अंदर भी श्रेष्ठ कलाकार के रूप में 11वीं सदी में दिलवाड़ा का मंदिर बना हुआ था, और दिलवाड़ा के मंदिर के अंदर जो श्रेष्ठ कला उस जमाने में पश्चिम की दुनिया में तो साधारण जीवन व्यतीत होता था, उसके बदले में यहाँ पर इतने सुंदर कलाकार के रूप में नक्शी काम के रूप में कारोबार करने वाले हमारे माउंट आबू के अंदर, मैं आपको बता रहा था, दिलवाड़ा का मंदिर में आप जाकर के देखेंगे कि 11वीं सदी के अंदर भी इस देश की कला कितनी श्रेष्ठ थी, कला इतनी श्रेष्ठ थी कि जिसके लिए आज भी वो कला जो है, वो मंदिर जो है, उसके अंदर की कलाकृति जो है, उसको लोग याद करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं। मेरा विचार तो आज तो मेरा जो कर्तव्य है विषय प्रवेश, अर्थात आज 3 दिन के अंदर ये जो थीम जो है रखा हुआ है, उस थीम के आधार पर जो कारोबार यहाँ होने वाला है उसकी संक्षिप्त में आपको समाचार देने का और आपको बताने का कि आप 3 दिन के अंदर जो यहाँ रहेंगे और 3 दिन के अंदर जो कारोबार होगा, जो कला और साहित्य के और संस्कृति के विषय में जो बताया जाएगा, उसको आप समझ करने का प्रयत्न कीजिए। सृष्टि रूपी रंगमंच के ऊपर अनेक संस्कृतियां आ गई, संस्कृति का भी विकृत रूप हो गया है। वानर फॉर एग्जाम्पल, हनुमान वानर आदि जो भी, वो वास्तव में वानर संस्कृति थी, वानर राक्षस वो भी संस्कृति थी, उसके बदले में हमने क्या क्या कर दिया, राक्षस किस प्रकार का होता है, ऐसी भ्रांत कल्पनाओं समाज के सामने रख करके जो भारतीय संस्कृति का जो विकृति स्वरूप जो है वही दुनिया के सामने रखा। और उसमें भी भारत जब अंग्रेज लोगों का गुलाम था तब इन्होंने ही भारत के इस प्रकार की विकृति की बातें जो है उसको भारतीय संस्कृति समझ करके बता करके उस प्रकार के कारोबार करना शुरू कर दिया। और इसलिए जब से हम भारत आजाद हुआ है तब से ये कारोबार करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप सबके सहयोग से कला और संस्कृति, भारत की संस्कृति, भारत की कलाएं जो भी है, जीवन जीने की कला अभी जो भी है, उसके अंदर सत्व प्रधान स्वरूप क्या हो सकता है, और सत्व प्रधान स्वरूप के आधार पर सत्व प्रधान कलाएं क्या हो सकती है, और सत्व प्रधान संस्कृति क्या हो सकती है, उसकी आप सबको पहचान मिले, और उसके आधार पर परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम कलाकार जो है और वो विश्व परिवर्तन का जो कार्य अभी कर रहे हैं उसकी भी आपको संक्षिप्त में उसका साक्षात्कार हो जाए, और उसी के आधार पर आप अपने जीवन को भी और अपने जीवन की जो आपके पास कलाएं जो है, आपके पास सांस्कृतिक विचार जो भी है, कर्तव्य की भावना जो है, इन सबको श्रेष्ठ बनाने का आपको मार्गदर्शन मिले, इसीलिए ही इस हमारी आर्ट एंड कल्चर विंग की कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। हमें खुशी है कि आज हमारे आर्ट एंड कल्चर विंग की जो सिल्वर जुबली है, अजय जयंती महोत्सव जो है, उसके अंदर आप सम्मिलित हुए, और इसके लिए आप सबका मैं दिल से आभार मानता हूँ, कारण कि आप इतना समय लेकर के आए हैं और हमारे जो रजत जयंती महोत्सव जो है इसकी शोभा बढ़ाई हुई है। तो इस प्रकार से उम्मीद रखता हूँ कि आप यहाँ 3 दिन के अंदर जो रहेंगे और यहाँ कल्चरल प्रोग्राम आदि भी जो प्रस्तुत होंगे उसका पूरा ही लाभ लेंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ आप अपने जीवन के अंदर प्राप्त करके जाएंगे, यही हमारी शुभेच्छा है, यही हमारी शुभ भावना है, और इसलिए आप सब इस प्रकार का कारोबार में मदद करें, और हम सब मिलजुल करके भारत की संस्कृति, भारत की कलाएं जो है उसका सर्वोत्तम सर्वोच्च रूप क्या है, और उसको फिर से समाज, उसके आधार पर समाज को फिर से सर्वश्रेष्ठ बनाने का हम प्रयत्न करें, यही शुभ भावना है, और इसके अंदर आप सबका सहयोग मिलेगा, यही शुभ भावना रखता हूँ। और आपका सहयोग आप जो देने वाले होंगे उसके लिए पहले से ही हमें विश्वविद्यालय की ओर से, हमारे आर्ट एंड कल्चर विंग की तरफ से आपका आभार मानता हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता रमेश भाई जी, आपने अपने अनुभवयुक्त विचारों के द्वारा कला में परमात्म शक्ति को कैसे लाया जाए और एक सफल कलाकार बना जा सकता है, इसके बारे में अपने बहुत ही सुंदर विचार हमारे सामने रखे, आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी मैं हमारे बीच में आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मेहमान, हमारी प्यारी बहन वर्षा उसगांवकर जी। आप हमारे इस विश्वविद्यालय से काफी समय से जुड़े हुए हैं और जब भी हम आपको याद करते हैं, आप इस ईश्वरीय निमंत्रण को बहुत ही खुशी से स्वीकार कर लेते हैं, आपका हम दिल से स्वागत करते हैं। आपने हिंदी एवं मराठी फिल्म में अपनी कलाओं के द्वारा एक सफल अभिनेत्री के रूप में अपने व्यक्तित्व को उभारा है। मराठी फिल्मों में आप एक बहुत ही प्रतिभाशाली फीमेल एक्ट्रेस रह चुके हैं। 1984 के अंदर आपने जो अपना पहला स्टेज प्ले ब्रह्माचारी जो पेश किया, जिसमें आपने अपनी कला के द्वारा आप एक मशहूर अभिनेत्री बन चुके। हमारे बीच में हमारी आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी भी पधार चुके हैं, हम आपका बहुत बहुत दिल से अभिवादन करेंगे। दादी जी अभी अभी दो दिन पहले ही अपनी विदेश यात्रा, रशिया आदि कई जगह पर ईश्वरीय सेवाओं को करके हमारे बीच में पधारी है। दादी जी का धन्यवाद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, आपका स्वागत कर रही है बहने बुके और बैचेस के द्वारा। और साथ में हम सबकी प्यारी मुन्नी बहन जी, आप भी अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में पधारे हैं, आपका भी अभिवादन बुके और बैचेस के द्वारा। अभी हमारे मंच की शोभा और बढ़ गई है, हमारे बीच में ऐसी महान आत्माओं का आगमन हो चुका है। तो हमारे अगले कलाकार के बारे में मैं आपको बता रही थी, वर्षा बेन जी, जिन्होंने अपना पहला स्टेज प्ले ब्रह्माचारी के द्वारा अपनी इस कैरियर को बहुत ही टॉप पे पहुंचाया और आप एक मशहूर अभिनेत्री बन चुके। उसके पश्चात गम्मत जम्मत, हमाल दे दमाल जैसे फिल्मों में रोल करके आपकी इस कला ने आपको चोटी पे पहुंचा दिया। हिंदी फिल्मों में भी आपने कई प्रकार के सुंदर अभिनय दिए हैं। महाभारत में भी आपने उत्तरा अर्थात अभिमन्यु की पत्नी के रूप में रोल किया, जो बहुत ही सुंदर रीति से आपने अपने रोल को अदा किया। चंद्रकांता सीरियल में भी आपने अपने अभिनय को दिया है। तो ऐसी कलाओं से संपन्न प्रतिभा को अभी मैं आमंत्रित करती हूँ, अपने दिल के उद्गार हमारे सामने रखेंगे वर्षा बेन।
यहाँ मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सब सखियों को, मित्रों को मेरा नमस्कार। अतिथि देवो भव, यह हमारी भारत की संस्कृति है, उसका प्रत्यय यहाँ कदम पड़ते ही आता है। हम मुंबई से, मेरे पति अजय शर्मा जो यहाँ ऑडियंस में बैठे हैं, हम दोनों बहुत थक के आए थे मुंबई से, रात भर सफर करके अहमदाबाद तक आए और वहां से माउंट आबू आई। मन और शरीर बहुत थक गया था, लेकिन यहाँ आके हम बड़े प्रसन्न हो गए और तीसरी बार यहाँ आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। माउंट आबू में इस स्वर्ग जैसी जगह पर आने को बार बार मन करता है। अब यहाँ कला और संस्कृति विंग का रजत महोत्सव है और इसके लिए मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की बहुत ही मतलब उनका बधाई देती हूँ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उनका जीवन बहुत निरस है, भौतिक सुखों से अलग है, उनके जीवन में सिर्फ अनुशासन है, लेकिन वो भी कला में रुचि रखते हैं, संस्कृति में रुचि रखते हैं। और आपको तो पता है कि जैसे हमें पेट की भूख लगती है, मतलब हमें खाना खाते ही अच्छा लगता है, उसी प्रकार मन को भी भूख होती है मनोरंजन की, और मनोरंजन का सब सामान हमें साहित्य से मिलता है, काव्य से मिलता है, दृश्य श्राव्य कला जैसे सिनेमा से मिलता है। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे मीडियम की एक भाग हूँ। मैं गोवा से महाराष्ट्र में आई, महाराष्ट्र में मुझे अपना लिया, भारत ने मुझे अपना लिया, बहुत सारी हिंदी फिल्में की, 50 के ऊपर मराठी फिल्में की और लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। अभी भी मन में बहुत उर्मी है, बहुत इच्छाएं हैं और कोई कोई मुझे पूछता है कि अभी तक आपका मन भरा नहीं क्या अभिनय से? तो मुझे लगता है कोई भी कला एक सागर की तरह होती है। तो अभी मेरा मन भरा नहीं है, आपके आशीर्वाद से मैं और आगे जाना चाहती हूँ जिंदगी में। हर एक मनुष्य को उसके मन में उसके उसको एक हुनर होता है, कला होती है। तो मैं आप सबसे विनती करूंगी, खास करके जो यंग जनरेशन है, कि अपने अंदर जो हुनर है, कला है, उसको उसका विकास कीजिए। चाहे वो संगीत हो, चाहे वो अभिनय हो, उससे आपके मन को प्रसन्नता होगी, वो एक स्ट्रेस बस्टर होता है। तो अभी ये महोत्सव 3 दिनों तक चलता रहेगा, तो आपके बीच में मैं मौजूद हूँ और इस समारोह का मैं पूरी तरह से आनंद उठाना चाहती हूँ एक कलाकार के तौर पर और आप जैसे रसिक के तौर पर। बस फिर एक बार आपका स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जय हिंद, ओम शांति। हम नमस्कार कहना चाहते हैं पर ओम शांति, शांति की मन को बहुत जरूरत है, वो किसी दुकान में नहीं मिलती है, हमारे मन में होती है। तो यहाँ आके उसका प्रत्यय बार बार होता है। धन्यवाद।
धन्यवाद वर्षा बेन जी, आपने कम शब्दों में भी अपनी दिल की उदार भावनाओं को बहुत प्यार से हमारे सामने रखा और कलाकारों को एक ये आह्वान भी किया कि कैसे सागर की तलह कला को विकसित करके इसको निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। और यही एक सच्चे कलाकार की पहचान है, जो हमेशा अपने दिल में इस कला की भावना को जागृत रखता है। बहुत धन्यवाद, आप ऐसे सफर करके, रात्रि के दौरान भी सफर करके हमारे इस समारंभ में समय पर पहुंच गए हैं। ये भी आपका कला और इस विश्वविद्यालय के मूल्यनिष्ठ इस क्रांति और कार्य से अपना प्यार जाहिर करता है। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में ऐसे ही एक प्रतिभा संपन्न और एक कलाकार को, मिस्टर कमलेश मोटा जी। आप भी खास मुंबई से हमारे बीच में पधारे हैं। आप वर्तमान समय मुंबई में भारतीय विद्या भवन के डायरेक्टर, प्रोग्राम के डायरेक्टर के रूप में अपनी बहुत ही सुंदर वहां पर सेवाएं दे रहे हैं। आपने अपनी कला की शुरुआत बाल्यकाल से ही की है। 1983 में आप चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपनी यात्रा को शुरू किया और फिर डायरेक्शन करना भी आरंभ किया। आपकी प्रतिभा को लेकर के अनेकविध कला में आपने अपने जीवन को व्यस्त कर दिया। टेलीविजन के कुछ मशहूर सीरियल्स में भी आपने परफॉर्मेंस दिया है, जैसे कि एक महल हो सपनों का, पार की थापन, साथियामा, एक रंग ओछो, ये गुजराती कई सारी ऐसे ड्रामा के अंदर भी आपने बहुत ही सुंदर अपनी एक्ट की है। गुजराती एवं हिंदी थिएटर के आप डायरेक्टर भी हो और हम भी आपको काफी नजदीकी से जानते हैं कि कैसे आप अपने मूल्यों को साथ साथ रखकर के कला को आगे बढ़ाते हैं। नरसैयानो नाथ, हम नील गगन के पंछी जैसे कई सारे प्लेज में आपने अपनी कला का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया है। आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए भी आपने 8 वर्षों तक प्लेज को डायरेक्ट किया है, जिसके माध्यम से भारत की इस संस्कृति को पूरे विश्व में कई जगह पर आप फैलाने के निमित्त बने हो। तो ऐसे ही कलाकार को अभी हम आमंत्रित करते हैं कि अपनी भावनाओं को हमारे सामने रखें। आदरणीय कमलेश भाई जी।
मंच पर विराजे सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। ऑडियंस में बैठे सारे मित्र, सारे प्रेक्षक, सारे मेरे बंधु, सारी बहनें, सभी को मेरा नमस्कार। ओम शांति। पिछले करीबन 4 साल से ब्रह्मा कुमारीज में से मुझे इनविटेशन मिलता था कि मैं यहां पर आऊं और आप लोगों के साथ कुछ समय बिताऊं, पर हर बार ऐसा होता था कि मेरे पास समय नहीं रहता था, या तो मैं नाटक में व्यस्त रहता था या भारतीय विद्या भवन की इतर प्रवृत्तियों में व्यस्त रहता था। लेकिन इस बार जब दयाल जी आए, नेहा बेन आई मेरे पास, आशा जी आई थी, और तुरंत मैंने हाँ कह दिया कि हाँ मैं यहां आऊंगा और मेरे परिवार के साथ आऊंगा, और यहां आने के बाद मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत बहुत खुशी होती है कि इस बार मैंने ये जो समय निकाला है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सचमुच मेरा सौभाग्य है कि यहां आप लोगों के साथ मुझे कुछ समय बिताने के लिए मिलेगा। इसलिए मैं, जो लोग मुझे उकसाने के लिए, मुझे राजी करने के लिए वहां भारतीय विद्या भवन में आए थे, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे यहां पे आने का एक मौका मिला है। थैंक यू सो मच। मैं कई सालों से नाटकों में काम करता हूं, भारतीय विद्या भवन से जुड़ा हूं, बाल नाटक से लेकर आज कमर्शियल नाटकों में भी काम करता हूं, गुजराती नाटक करता हूं, हिंदी और अंग्रेजी नाटक कम करता हूं क्योंकि वहां कमाई थोड़ी कम होती है। नहीं, ये सच बात है, लेकिन गुजराती रंगभूमि और मराठी रंगभूमि, ये दो रंगभूमियां ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं, और ना ही सिर्फ पैसा कमाने का काम करती हैं लेकिन बहुत अच्छे नाटक वहां खेले जाते हैं, बहुत अच्छे नाटक खेले जाते हैं, और इसमें सांस्कृतिक नाटक भी होते हैं, संगीत नाटक भी होते हैं, काव्य नाटक भी होते हैं। और जिस तरह से यहां ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कल्चर के बारे में जो काम करना चाहती है, तो उसी तरह से गुजराती और मराठी रंगभूमि भी काम करती है, रेगुलर काम करती है, शायद रोजाना काम करती है। मुझे ऐसा नहीं लगता होगा कि कोई भी एक दिन ऐसा होगा जब कोई मराठी नाटक का शो न हो, ना या कोई गुजराती नाटक का शो ना हो, पूरे गुजरात में, पूरे महाराष्ट्र में, और कई भारत के कई ऐसे शहर हैं जहां पे ये नाटक खेले जाते हैं। कलकत्ता में नाटक खेले जाते हैं, दिल्ली में नाटक खेले जाते हैं, बेंगलोर है, हैदराबाद है, नासिक है, नागपुर है, सारा गुजरात है, बहुत सी जगहों पे नाटक के द्वारा बहुत सारे कलाकार आर्ट एंड कल्चर का प्रमोशन करते हैं। बहुत से ऐसे लेखक हैं जो भावनाट्य लिखते हैं, किसी संत की जीवनी पर नाटक लिखते हैं, कविताओं पर नाटक लिखते हैं, और हमें ये सारा काम करते हुए बहुत आनंद आता है, सचमुच बहुत आनंद आता है। पैसा तो कमाना है, सबको कमाना है, लेकिन उसके साथ में जब ये अध्यात्म का जो मसाला है, वो मसाला जब मिक्स हो जाता है तो उसका आनंद कुछ और ही होता है, कुछ अलग होता है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि थिएटर ज्यादा काम का नहीं होता है, ये क्या नाटक वाटक में काम करना, कुछ और काम धंधा करना चाहिए, ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, इसे लेके सब कुछ, बहुत कुछ ऐसा कहते हैं लोग। जब हमें कोई पूछता है, घर पे कोई आता है तो पूछते हैं कि क्या काम करते हो, तो हम कहते हैं कि नाटक में काम। अच्छा, नाटक में काम करते हो, ऐसा सुनना पड़ता है। लेकिन जब कुछ वर्षों के बाद उनको पता चलता है कि नहीं, हम सचमुच अच्छे नाटकों में काम करते हैं, और ऐसा कुछ काम करते हैं जो इतर कोई मानवी नहीं कर पाता है। उर्मिला जी यहां पे बैठी हैं, इन्होंने बहुत सारे नाटक में काम किया है, मैंने इन्हें देखा भी है, इनकी बहुत सारी फिल्में भी मैंने देखी हैं। भारतीय विद्या भवन जो मुंबई में है, वो इंटर कॉलेजिएट ड्रामा कॉम्पिटिशन का आयोजन करती है 1951 से आज तक वो काम चलता ही रहा है। ये हमारा काम भी वही है कि हम आर्ट और कल्चर को बढ़ावा दें। और यहां जब मुझे इनविटेशन मिला कि आर्ट और कल्चर के ऊपर बोलना है मुझे, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ कि एक और संस्था, एक और कम्युनिटी ऐसी खड़ी हो गई है जो आर्ट और कल्चर के बारे में सोचती है और जो नई जनरेशन जो आएगी या नई पीढ़ी जो आएगी उसको ये बात मालूम करनी है। मैं हमेशा एक बात दोहराता हूं, ये एक मेरा स्लोगन आप कह सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि थिएटर का काम का है, तो मैंने एक स्लोगन बनाया हुआ है, थिएटर इज लेस इंपॉर्टेंट देन लाइफ। थिएटर इज लेस इंपॉर्टेंट देन लाइफ बट व्हाट अ पुअर लाइफ विदाउट थिएटर। कला के बिना जीवन अधूरा है, बहुत ही अधूरा है। अगर कला नहीं है तो जीवन किसी कचरा पेटी के समान है, मुझे ऐसा लगता है। कविता है, संगीत है, नाटक है, हमारा इतिहास है, महाभारत, रामायण, गीता, ये सारी की सारी चीजें हमारे जीवन में बहुत काम की चीजें हैं। हम जब अभिनय करते हैं तो हमको हम जो रोल करने वाले हैं उसका अभ्यास करना पड़ता है, और वो जो अभ्यास हम करते हैं, जिस तरह से आप मेडिटेशन करते हो तो हम भी मेडिटेट करते हैं उस रोल को पाने के लिए, तब जाके हम एक अच्छा किरदार वहां पेश कर सकते हैं और लोगों की तालियां मिलती हैं। हर कलाकार तालियों के लिए बहुत लालची होता है हमेशा और राह देखता है कि कब हमें तालियां मिले, कब तालियां मिले। लेकिन वो तालियां हमको तब मिलेगी जब हम अपनी सोच उतनी ऊपर ले जाएंगे। उतनी ऊपर अगर हम सोच नहीं ले जाएंगे तो हमको वो तालियां नहीं मिल सकती, ना हमको वो लोगों की तरफ से एक मेहमान नवाजी नहीं मिल सकती, या कोई हमें स्माइल नहीं दे सकता, यार ठीक है हाँ है वो एक छोटा मोटा काम करता है ऐसा। अगर कलाकार बनना है तो चाहे आप छोटा रोल करो चाहे बड़ा रोल करो, आपको दिल से काम करना बहुत जरूरी होता है। हम ये कहते हैं, हम राधर हम लोग ये करते हैं, जब भी हम नाटक का खेल शुरू करते हैं तो एक प्रार्थना होती है, हर जगह पे ये प्रेयर किया जाता है। मुंबई में जो हम जब शुरू करते हैं तो आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्रतारादि त्वम नमः सात्विकम शिवम। आंगिकम भुवनम यस्य, जब हम बॉडी का मूवमेंट जब हम शुरू करते हैं, या जो हमारी बॉडीली मूवमेंट जो है वो सारे यूनिवर्स की मूवमेंट है। वाचिकम सर्ववांगमयम, सारे यूनिवर्स की वो लैंग्वेज है। आहार्यम चंद्र तारादि, चंद्र और तारे जो है ये वो हमारे ऑर्नामेंट्स हैं। त्वम नमः सात्विकम शिवम, त्वम ही द सुप्रीम सोल, उसको हम नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं क्योंकि वो नटराज जो नाटक का देवता है, जो जो इस कला का देवता है, उसको नमस्कार करके हम हमारा खेल शुरू करते हैं। और जो एक शक्ति, एक ऊर्जा जो हमारे अंदर पैदा होती है, वो ऊर्जा, उस शक्ति के सहारे हम जो कुछ भी लिटरेचर, जो कहानी या जो कविता या जो नृत्य या जो जो कुछ भी पब्लिक के सामने हम पेश करने जाते हैं, वो हम ये सोचकर करते हैं कि वो पब्लिक के दिल में बैठे और वो आगे ले जाए उस चीज को, और अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है उसके साथ वो बात करे। और ये बात करनी बहुत जरूरी होती है। हर कलाकार को 100% पैसा कमाना जरूरी है, क्योंकि उसे भी बिल आते हैं, लाइट का बिल आता है, टेलीफोन का बिल आता है, हर किस्म के उसको भी बिल भरने हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि कलाकार को मुफ्त में काम करना चाहिए, कलाकार को भी पैसे की जरूरत होती है, लेकिन हर वक्त पैसा वो एक एम नहीं रखना चाहिए दिमाग में। कुछ अच्छी चीजें जब होती हैं तो उसका उसमें हमको सहभागी होना भी इतना ही जरूरी है। जो रमेश भाई ने जो बातचीत की, जो हमारे मूल्य की बातचीत की, हम उसमें बहुत मानते हैं, और हर कलाकार को ये समझ होनी बहुत जरूरी है। जिस तरह से उर्मिला जी गोवा से लेकर महाराष्ट्र तक आई और उन्होंने जिस तरह से अपना एक करियर बनाया, तो करियर बनाने के वक्त उन्होंने जिस लगन से काम किया है वो हमने देखा है, क्योंकि हम बंबई में रहते हैं तो हमको पता चलता है कि किस तरह से काम किया है। बाहर सबको ऐसा लगता है कि सिल्वर स्क्रीन है, यहां तो चांदी है, नहीं चांदी नहीं होती है, वहां बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शूटिंग में जाते हैं तो 6 बजे उठ जाना पड़ता है, कभी 5 बजे भी उठना पड़ता है, और सुबह 7 बजे मेकअप रेडी करके तैयार रहना पड़ता है। ये बहुत मेहनत मांगता है ये काम। जिस तरह से हम डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, तो उस तरह कलाकार बनने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ जो लोग कलाकार बनने के लिए तैयार हुए हैं, जो यंग जनरेशन जो है वो आगे जाने के लिए तैयार है, उसे भी ये एक बात दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है। डायरेक्ट कुछ कभी नहीं मिलता है। हम जब बड़े होते हैं, जन्म होता है हमारा, तो सबसे पहले हमको माँ का दूध दिया जाता है। अगर डायरेक्ट हमको पाव भाजी खिलाई जाती तो हमारा क्या होता, हम मर जाते वहीं के वहीं। उसी तरह से माँ के दूध से जो शुरुआत होती है, धीरे धीरे हमारा आहार बढ़ता है, धीरे धीरे हमारा शरीर स्वस्थ बढ़ता है, से लेके हम भाषाएं सीखते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, उर्दू, हर भाषा सीखते हैं, तो धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस जो है, हमारी जो नींव जो है उसको बहुत मजबूत बनाकर हमको आगे बढ़ना पड़ता है। और ये बात हर किसी कलाकार को ध्यान में रखनी पड़ती है। आशा रखते हैं कि हम जो यहाँ आए हैं, हम आपको जितना हमने जो पाया है वो सब शेयर करें। कोई भी कहीं भी इस परिसर में हमें मिल जाए, हमसे बातचीत करनी हो तो कर सकते हैं। मैं बम्बई में भारतीय विद्या भवन में बैठता हूँ, वहां पे भी अगर कभी आप बम्बई आ जाएं और आपको लगे कि कला के बारे में बात करनी है, या नाटक के बारे में, संगीत के बारे में, फिल्म के बारे में, आप आ सकते हैं और मैं आपके साथ मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए राजी हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भाई जी, आपने बहुत सुंदर रीति से एक कलाकार की कला को कैसे आगे बढ़ाया जाता है और कैसे आपने मूल्यों को लेकर समाज के वर्ग को नाटक के माध्यम के द्वारा, अपनी कला के माध्यम के द्वारा आप कैसे उनको मार्गदर्शित करते हो, बहुत सुंदर रीति से आपने बताया। और आप इस विश्वविद्यालय के काफी समय से सहयोगी रहे हैं, जब भी कोई सेवा की जरूरत पड़ती है आप हमेशा अपने सहयोग को देते रहते हो। आपका फिर से मैं एक बार दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कैंडल लाइटिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर प्रकाश, लाइट, उसका उतना ही महत्व है जितना ही आध्यात्मिक शक्ति का, क्योंकि हमारा स्वरूप भी एक प्रकाशित लाइट का स्वरूप है और हमारे पिता परमात्मा शिव पिता का स्वरूप भी एक परम ज्योति का स्वरूप है। जब ज्योति ज्योत से मिलती है तो दिव्य शक्तियां जागृत होती है। और इसी की यादगार के रूप में हमारी संस्कृति में भी कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत या उनकी सफलता के लिए हम दिया जगाते हैं, दिया जलाते हैं, अग्नि को साक्षी रख कर के श्रेष्ठ कार्य को संपन्न करते हैं। तो इसी कैंडल लाइटिंग सेरेमनी के लिए मैं हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सर्व मेहमानों को निवेदन करूंगी कि कृपया आप भी आकर कैंडल लाइटिंग में अपना सहयोग देंगे, और साथ साथ कुछ एक मेहमान जो सभा में बैठे हैं उनको भी मैं आमंत्रित करूंगी। कृपया आप भी स्टेज पर आकर कैंडल लाइटिंग में अपना सहयोग देंगे।
Thank you.
बहुत ही सुंदर इन जगते हुए दीपकों से हमें यही संदेश लेना है कि हम अपनी आत्मा रूपी ज्योति को भी आध्यात्मिक ज्ञान और परमात्मा की याद से ऐसे ही सदा प्रज्वलित रखें। अभी हमारे बीच में जिस घड़ी की हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे बीच में पधारी हुई हमारी आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, जो अपने व्यस्तता के बीच में से भी इतनी लंबी टूर करने के बाद अपने आशीर्वचन देने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। दादी जी हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जॉइंट चीफ के रूप में सेवाएं दे रही है। अपने बाल्यकाल से ही प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ साथ रह करके अपने विशिष्ट गुण और कलाओं को लेकर देश विदेश में अनेक विध ईश्वरीय सेवाओं के आप निमित्त बने हैं। आज दादी जी 88 ईयर्स की उम्र में भी इतने ही एक्टिव है जैसे कोई यंग व्यक्ति हो। दादी जी की इतनी उम्र होते हुए भी आप हमेशा इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की सेवाओं में अथक बनकर के तत्पर रहती है। हमारे इस ईश्वरी विद्यालय में जो अलग अलग विंग्स बनी है उसमें एक विंग है यूथ विंग, और यूथ विंग के आप चेयरपर्सन के रूप में सेवाएं दे रही है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दादी जी आज के युवकों को भी आह्वान करके उनकी शक्तियों को जागृत करने की निरंतर प्रेरणा देती रहती है। उनके साथ साथ इस विश्वविद्यालय का जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उस पर्सनल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के रूप में आप सेवाएं दे रही है, और कैसे यहाँ पर सेवा देने वाली जो हमारे जैसी समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनें होती हैं, करीबन आज पूरे विश्व में 25,000 से ज्यादा ऐसी हमारी समर्पित बहनें हैं, तो उनको भी खास अलग ट्रेनिंग दी जाती है जिसको हम टीचर्स ट्रेनिंग कहते हैं। तो कैसे उस ट्रेनिंग में अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत करके विश्व सेवा में समर्पित होना है, तो ये ट्रेनिंग के भी आप डायरेक्टर के रूप में सेवाएं देती हैं। साथ साथ हमारे राजस्थान जोन के जोनल हेड के रूप में भी आप अपनी सेवाएं देती रहती हैं। आपके नेतृत्व के नीचे कई प्रकार की युवा रैली भी निकली हुई है। युवा पद यात्रा जो 2006 में निकली थी, जो कि विश्व की सबसे बड़े से बड़ी पद यात्रा घोषित हुई, उनके साथ साथ दादी जी की असीम सेवाओं को देख करके गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के द्वारा भी आपको 2014 में डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजित किया गया है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी प्यारी डॉक्टर राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, जो कि अपने प्रेरणादायी वचनों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा हमें आज ये बताएंगी कि कैसे कलाकार को कला के साथ साथ परम शक्ति से जोड़ करके अपना विकास करना है। तो आमंत्रित करती हूँ हमारी प्यारी मीठी दादी राजयोगिनी रतन मोहिनी दादी।
ओम शांति, ओम शांति, बोलो सब प्रेम से ओम शांति। आज आप सबका ये संगठन देख हमें बड़ी खुशी है। सभा में उपस्थित मैं समझती हूँ मेजॉरिटी शायद कलाकार होंगे, और मंच पर उपस्थित कलाकारों के सिखाने वाली सन्मान्य मंच, आज का ये शुभ उत्सव जो विशेष आज कल्चरल और आर्ट क्या कहें, इस कल्चरल विंग के तरफ से आज जो ये सिल्वर जुबली का उत्सव मनाया जा रहा है उसकी हमें बहुत खुशी है। इसके लिए इनके निमित्त बने हुए भाई बहनों को बहुत बहुत उनका स्वागत है, मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। जब कलाकार कहा जाता है तो सबसे बड़ा कलाकार, सबसे बड़ा कलाकार कौन? हम सर्व के परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिन्होंने ऐसी रचना, जिस रचना के अंदर कितने सब भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकार अपनी अपनी कलाओं से इस सृष्टि मंच पर अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। ऐसे इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाले कलाकारों को आज तो हम यही कहेंगे। वैसे तो जिनों जिनों का आज हमने सुना और जिनों को देखा है उन्हों का तो आप सबने सुना भी, बाकी तो हम यह कहेंगे आज की दुनिया के अनुसार सृष्टि मंच के अंदर जब ये परमात्मा पिता ने सृष्टि की रचना शुरू की, जब ये सृष्टि रची गई, तब जो इस सृष्टि पर एक्टर्स थे उन्हों की जीवन आज भी हम याद करते, उन्हों का जीवन चरित्र गाते हैं और उन कलाकारों को कहें, कलाकार शब्द तो आज की दुनिया का है, परंतु उस समय जो परमात्मा पिता ने पहली सृष्टि की रचना रची उसके अंदर जिन्हों का पाठ रहा उन्हों को तो हम आज भी उन्हों के मूर्तियों को पूजा करते हैं, जिन्हों को हम देवताएं कहते हैं। उन देवी देवताओं ने जब इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाया, जिन्हों का आज तक भी गायन है, वे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, और ऐसी दुनिया जिस दुनिया में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी अशांति नहीं, कभी दुख नहीं, कभी कोई रोग नहीं, सदा सब संतुष्ट, सदा शांति और सुख, बल्कि सर्व प्राप्तियों से संपन्न, ऐसी सृष्टि की रचना जो परमात्मा पिता ने की और वह रचना जब चलती आई, आज के रचना को देख करके बार बार वह याद आते हैं और देखते हैं बरोबर उन देवताओं को आज तक भी कितना गायन और पूजन करते रहते हैं। तो आज हम यही कहेंगे कि आज के समय में भी अगर हम अपने उन पूज्य देवताओं को याद करते हुए, उन्हों के उन गुणों को स्मरण करते हुए, और हम भी अपने जीवन में ऐसी गुणों की धारणा करते चलें, तो हम भी अपने को आज की दुनिया में रहते भी सदा खुशनुमा, सदा शांति संपन्न अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं आज के दुनिया में दुख अशांति और आज के दुनिया में क्या क्या हो रहा है आप सब जानते हैं और देखते रहते हैं। तो आज इसलिए कहा गया है कि अब हमें अपने उस परमात्मा पिता से वह शक्ति लेने की आवश्यकता है जो फिर से हमारे जीवन के अंदर वह कलाएं जागृत हो, जिन कलाओं के आधार से हम अपने जीवन में सदा सुख और शांति का अनुभव करते रहें, और ऐसी कलाएं जिससे हमारा आपस में सदा स्नेह बना रहे, एक दो के प्रति सदा शुभ भावनाएं बनी रहे, एक दो को देख करके हम खुश होते रहें, इसके लिए जैसे कि हम सब मानते भी हैं, हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है। हम सोचें, जब हम परमात्मा पिता को लगन से याद करते हैं और उसमें मन लगा करके बैठते हैं, तो उस घड़ी के लिए मन के अंदर कितनी शांति अनुभव होती है। इसी प्रकार अगर हम आपस में ऐसे ही स्नेह संपन्न, हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है, जब एक पिता की संतान तो हम सब आपस में क्या हो गए, हम सब आपस में हो गए भाई और बहन। तो ये हमारा एक ईश्वरीय परिवार है। तो हम तो ऐसे समझते हैं, भले निमित्त आज कलाकारों की का ये संगठन है, लेकिन उसके अंदर हम अपने परम कलाकार परम पिता परमात्मा को याद करते हुए आज के कलाओं के साथ जिससे लोगों का मनोरंजन होता है, और मनोरंजन भी किस लिए करते हैं, खुशी के लिए, परंतु हमारे साथ साथ जीवन में सदा खुशी बनी रहे, सदा एक दो के प्रति स्नेह भाव बना रहे, किसके प्रति गिलानी न हो, किसके लिए अशुभ भावना न हो, ऐसे अपने मन को शुद्ध करके मन के अंदर परमात्मा की याद से सदा हम शांति और प्रेम का अनुभव करते रहें। अगर ये बातें हम जीवन में धारण करें तो आज हम इस दुनिया में रहते वो अनुभव करते हुए कहां आपस में कितना स्नेह का अनुभव कर सकेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी, आज हम ये संदेश आपको इसलिए ही दे रहे हैं कि अब परमात्मा पिता का यही कहना है, जो आप जानते भी होंगे, हमारे श्रोमणि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान के महावाक्य है, याद होगा आप सबको, जब जब धर्म की अति गिलानी होती है, धर्म अर्थात जीवन के अंदर पवित्रता की धारणा, जब जीवन के अंदर पवित्रता की धारणा है, वास्तव में सच्चा धर्म जिससे हमारे जीवन के अंदर पवित्रता शुद्धता, जिससे ही शांति और प्रेम बना रहता है, ऐसी जीवन बनाने के लिए आज हम सर्वात्माओं के परमपिता परमात्मा, हम मनुष्य आत्माओं की ऐसी जीवन देखते हुए, क्योंकि हम सब मानते हैं हम एक पिता की संतान, अर्थात हमारा पिता परम पिता परमात्मा और हम सब उनके बच्चे, तो बाप को बच्चों पर तो सदा ही प्यार होता है। आज हम बच्चे इस दुनिया में रहते, जिस दुनिया में हमें बाप ने भेजा और ऐसा भेजा जो हम कितने सुख चैन की जीवन व्यतीत करते रहे, लेकिन आज के दुनिया में मनुष्य कैसी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये सब देखते हुए फिर से हम सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा, हम बच्चों को ऐसी ही जीवन बनाने के लिए यह शिक्षा दे रहे हैं कि इस संसार में इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाले हे आत्माएं, मैं समझती हूँ इस बात को आप सब जानते हैं, इस शरीर के द्वारा कर्म कराने वाली शक्ति आत्मा ही है। चैतन्य शक्ति जो इस शरीर के अंदर विराजमान है, परंतु उनको हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। अगर ये पहचान हम अपने अंदर जागृत करें और उस पहचान से हम स्वयं को यह जान कर चलें हम परम पिता परमात्मा शिव की संतान, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, यह जानकारी रखते हुए कर्म इंद्रियों से आत्मा जो परमात्मा की संतान है उसको कैसे श्रेष्ठ कर्म करना है, वो सारी जानकारी इस सहज राज्यों के द्वारा हमें मिल चुकी है, जिसको धारण करने से जब हम जीवन में ऐसा दृष्टिकोण ऐसी अंदर में समझ धारण करके और चलते हैं, तो सर्व के प्रति यही भावना हम एक पिता की संतान, एक ही आपस में परिवार है, और वो परमात्मा पिता जो वास्तव में हमारा पिता भी है, हमारा शिक्षक भी है और हमारा सतगुरु भी है। क्योंकि आज हमें इस शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है, और जब से हम लोगों ने ये शिक्षा प्राप्त की है तो देखते हैं बरोबर इस शिक्षा से जैसे हम स्वयं को परिवर्तन कर सके हैं, वैसे इस शिक्षा के द्वारा और भी परिवर्तन हो सकते हैं। और आज इस शिक्षा की आवश्यकता है, अर्थात हमें अपने पिता परमात्मा को मानते हुए उस परमात्मा पिता के साथ अपना दिल का कहें अथवा आत्मा का फिर से संबंध जोड़ के रखना जरूरी है। आत्मा जो शुद्ध स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, इन आँखों से नहीं देखी जाती, परंतु वो इस शरीर के अंदर विराजमान है। परमात्मा पिता ने जब हम आत्माओं को सृष्टि मंच पर भेजा, इन गुणों से संपन्न भेजा, और सृष्टि मंच पर पाठ बजाते बजाते, अनेक प्रकार के पाठ बजाते बजाते, अनेकों के संग में आते आते धीरे धीरे हमारे पाठ बदलते गए और हमारे कर्मों में परिवर्तन आता गया, और आज हम देखें दुनिया का रंग, अपना संग और अपने जीवन के अंदर कर्म किस प्रकार के हमारे हैं। इसलिए अब इस बात की आवश्यकता है और अब समय आ चुका है परमात्मा पिता गुप्त रूप से यह अपना कार्य करा रहा है। आप सबको भी हमने इसलिए निमंत्रण दिया है, आप आइए पिता को पहचाने। पिता का भी कहना है अब ये सृष्टि बदल कर गाया हुआ है, जब जब धर्म की अति गिलानी होती है तब तब मैं अति साधारण रूप में गुप्त रीति से आकर के फिर से इस दुनिया को परिवर्तन करता हूँ, जो अधर्म विनाश और सत धर्म के स्थापना का कार्य सर्वशक्तिमान परमात्मा के परमात्मा पिता के द्वारा इसी सृष्टि पर होता है। और आज वो समय चल रहा है, परमात्मा फिर से इसी सृष्टि को और उसमें गाया जाता है, यही हमारा भारत स्वर्ग भूमि था। भारतवासी स्वर्ग को याद करते हो, याद जानते हो, स्वर्ग मानते हो न? स्वर्ग को मानते हो? हाथ उठाइए, मानते हैं स्वर्ग को? याद करते हो कि हमारा फिर से ये भारत स्वर्ग बने? यही हमारा भारत स्वर्ग था, जो था वो फिर से होना है जरूर, ये भावी निश्चित है। और वो कार्य परमात्मा पिता हम बच्चों को फिर से ऐसा सुखी बनाने के लिए, ऐसा सुखमय संसार हमारे लिए फिर से धरती पर ला रहा है। इसलिए आप जो अपने भाग्य बनाने के लिए पहुंच गए हैं, मैं तो कहेंगी आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ आपका आना हुआ। हम तो आपको उसी नजर से देखते हैं, भगवान ने आप सबको यहाँ भेजा है। भगवान के कार्य को जानकर आप अपने जीवन में यह जरूर अनुभव करिए और भगवान के महावाक्यों को मान करके अपने जीवन में उसका फायदा लेके अपनी स्वर्ग में आने के लिए अपने को तैयार कीजिए। ओम शांति शांति शांति।
बहुत दिल से हम दादी जी का धन्यवाद करते हैं कि दादी जी ने बड़े उमंग उत्साह से हम सबके प्यारे पिता शिव बाबा के आह्वान को हमारे सामने रखा और एक महान संदेश हर कलाकार को ये दिया कि कैसे हमारी कला एक समय में संपूर्ण पवित्र कला थी, जिसको हम देवी कला कहते थे। जब देवी देवता के रूप में उस कला को प्रदर्शित किया जाता था, वही कला हमें फिर से लानी है। यही शिव बाबा के आह्वान को जो हमें दादी जी के द्वारा प्राप्त हुआ, उसको अवश्य ही हम पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प करेंगे। तभी हमारा ये कला एवं संस्कृति विभाग की ये सिल्वर जुबिली का जो ग्रैंड फिनाले है वो सफल माना जाएगा और हम अवश्य पूरा करके ही रहेंगे। यही शुभ भावना के साथ हम फिर से प्यारी दादी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ भ्राता राजयोगी करुणा भाई जी को। आप भी हमारे इस विश्वविद्यालय के मुख्यालय आबू में रहते हैं और आप हमारे मीडिया स्पोक्समैन हैं, आप मीडिया विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। आपने अपनी इस कला को कैसे मीडिया के द्वारा जन जन तक ये ईश्वरीय संदेश को पहुंचाए, इसमें अपनी कला को लगाकर आज देश विदेश में इस ईश्वरीय सेवा को बढ़ाने में अपना अहम योगदान आप दे रहे हैं। आपको मास कम्युनिकेशन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल अवार्ड के द्वारा यूएनओ के द्वारा सम्मानित किया गया है। आपको चाणक्य अवार्ड और स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। तो ऐसे हमारे वरिष्ठ भ्राता करुणा भाई जी से मैं निवेदन करूंगी कि आप भी अपने दिल के भावों को हमारे सामने रखेंगे। आदरणीय करुणा भाई।
ओम शांति। आप सबके साथ मुझे भी हाथ उठाने का सौभाग्य मिला कि हम सभी मानते हैं कि भारत में स्वर्ग था। विश्व के किसी भी और देश वाले ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा देश में स्वर्ग था। हम भारतवासी ही इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में सोने की चिड़िया, स्वर्ग, देवताओं का राज्य था। इसीलिए आज भी हमारे देश में देवी देवताओं का मंदिर है। दूसरे देशों में देवी देवताओं का मंदिर नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्फ्रेंस भी हम सब के लिए इसीलिए एक आदर्श है। सारे विश्व को हमको बताना होगा कि भारत क्या था और अब फिर से भारत ऐसा ही बनेगा। जो आजकल हम सब ने सुना था, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो हमारे दादी जी कई सालों से कह रहे हैं भारत में फिर से स्वर्ग आने वाला है। तो इसीलिए जो आज हम कल्चर के बारे में जो बात करते हैं, वो कौन सा कल्चर है जो इस समय पर जो हम देख रहे हैं, समय पर समय जो बदलता हुआ, वो संस्कृति है या कल्चर है, या जो भारत के आदि में जो संस्कृति थी, सतयुगी संस्कृति, देवताओं की संस्कृति, तो वो आपको यहां बताया जाता है कि जो भी संस्कृति हम बोल रहे हैं वो सनातन संस्कृति है, देवताओं की संस्कृति है। इसीलिए ही कहा जाता है नर और नारी ऐसा कर्म करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। तो वो संस्कृति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। आप सभी 3 दिन यहां रहेंगे और अपने जीवन में वो कला, जैसे रमेश भाई जी ने भी बताया कि हमारी जो कला है वो जीवन की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। सतयुग में देवताएं कैसे रहते थे, जो कला 16 कला संपूर्ण थे, वो कलाएं कौन सी है और उसको फिर से वापस अपने जीवन में कैसे लाया जाए, वो केवल एक व्यक्ति के अंदर या एक ग्रुप, भाई ये कलाकारों का एक ग्रुप है उनमें ये कलाएं होंगी, ऐसा नहीं है। जब सतयुग में जो भी देवी देवताएं हैं उन सबके अंदर ये कलाएं कैसे आए, तो वो शिक्षा इस ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा सिखाया जाता है। तो इसमें आप सभी से भी निवेदन है, तो हर रोज हम लोग कल्चरल आइटम तो रख रहे हैं, परंतु उसके अलावा सुबह से कई बार आपको आध्यात्मिक कला सिखाई जा रही है जो उन 16 कलाओं का फाउंडेशन है। तो किस तरह से आत्मा फिर से अपने अंदर वो 16 कला ला सके, तो वो शिक्षा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आप सबको सिखाया जाता है। ये कार्य हमारी जो विंग, कल्चरल विंग जिसको कहते हैं, तो ये इतनी विशेष विंग है क्योंकि सतयुग के बारे में बताया जाता है कि वहां ना कोई डॉक्टर्स है, ना कोई लॉयर्स है, ना कोई जजेस है, या इस प्रकार के जो भी विंग्स है वो वहां नहीं होंगे, परंतु कल्चरल जो है वो तो जरूर रहेंगे। तो इसीलिए आप वो विंग में आए हैं जो सतयुग में भी ये विंग आपकी रहेगी, क्योंकि ये कला हम अभी सीख रहे हैं जो पूरे कल्प में चलेगा। तभी तो आज कलयुग कहते हैं, कलयुग का अंत में भी ये कला है। तो पूरे कल्प में जो रहने वाली जो कला है, तो वो ये विंग हम सबको सिखाते हैं। इसीलिए ये विंग हम सबके लिए है और हम लोगों को ये कला सारे विश्व को कैसे बताया जाए, भारत में फिर से ये संस्कृति कैसे लाया जाए, जो सचमुच जो कहा जाता है अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उसका निमित्त आप सभी बनेंगे, ऐसी आशा मैं रखते हुए मेरा दो शब्द समाप्त करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता करुणा भाई जी, आपने भी इस कला को बहुत सुंदर रीति से महत्व देकर कैसे ये कला आदि से हमारे साथ चलेगी उसको हमारे सामने स्पष्ट किया, आपका धन्यवाद है। और हमें ये भी बताने के लिए कहा गया कि अभी का एक कार्यक्रम भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है पीस ऑफ माइंड चैनल में एयरटेल, वीडियोकॉन और रिलायंस के द्वारा। तो ये भी आपकी सेवाओं का ही एक रिजल्ट है कि आज एक जगह पे होता हुआ कार्यक्रम विश्व में अनेक कोनों में अनेक लोगों को इसके द्वारा लाभ प्राप्त हो रहा है, आपका बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारे बीच में ऐसे ही एक और विशिष्ट रत्न को आमंत्रित करती हूँ, राजयोगिनी प्यारी मुन्नी बहन जी। मुन्नी बहन जी, आपका लौकिक नाम तो लक्ष्मी बहन है, लेकिन आपको हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी भाई बहनें और हमारी दादियां प्यार से मुन्नी बहन कहती है। आप भी अपनी कन्यावस्था के दौरान ही अपनी इस ईश्वरी सेवाओं की यात्रा इस आबू के मुख्यालय के द्वारा शुरू किया और तभी से इस मुख्यालय में रह करके आपने अपनी सेवाएं देना शुरू किया है। आपका एक परम सौभाग्य ये रहा कि हमारे विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी के साथ अंग संग रहकर उसको संभालकर ईश्वरी सेवाओं को बढ़ाने का आपको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। साकार ब्रह्मा बाबा और वरिष्ठ दादियों के साथ साथ रहकर के आपने अपने जीवन में इतनी विशिष्ट शक्तियों को और कलाओं को जागृत कर लिया है कि आज आप देख रहे हैं कि ये जो भी हमारा विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर का पूरा कारोबार चल रहा है, आप कोई भी स्थान पर जाएंगे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े भवन सब कुछ देखने को मिलेगा। हमारे चार अलग अलग कॉम्प्लेक्स में एक साथ सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं जिसमें हजारों भाई बहने एक साथ आते हैं, तो ये सारे भवनों का सुचारू रूप से संभाल करना, आने वाले जो भी हमारे मेहमान या हमारे ब्रह्मा कुमार भाई और बहने हैं उनका पूरा देखरेख करना, उनको आने वाले मेहमानों की खातरी करना, उसका भोजन, उनको सौगात देना, ये सारा कारोबार आप बहुत ही सुचारू रूप से उनका संचालन करती है। और उनके साथ साथ इस यज्ञ के, विश्वविद्यालय को हम यज्ञ बोलते हैं, तो यहाँ पर जितने भी हमारे कार्यक्रम चलते हैं उसको सुचारू रूप से कराकर संपन्न करने की अद्भुत कला आपके अंदर है। आप एक कुशल मैनेजर और एक कुशल कलाकार भी हैं और बहुत सुंदर सलाहकार भी हैं। और मैं तो अपने बहुत करीबी अनुभव से भी ये कहना चाहूंगी कि परमात्मा पिता से आपको एक गिफ्ट प्राप्त है कि जो भी कार्यक्रम होते हैं उनकी सारी डेट्स और सारे कार्यक्रम आपके दिमाग में हमेशा नोट रहते हैं। हमें तो उसके लिए डायरी देखनी पड़ती है लेकिन आपको साल भर के कार्यक्रम याद होते हैं, तो आपका दिमाग एक अद्भुत कंप्यूटर भी है, ये भी परमात्मा पिता की एक देन है। तो ऐसी विशिष्ट आत्मा, ऐसी हमारी प्यारी मुन्नी बहन जी जिन्होंने दादी जी के साथ रहकर देश विदेश में अनेक प्रकार की ईश्वरीय सेवाएं भी दी है और अभी भी अथक बनकर सेवाएं दे रही है, तो आपके मन में दिल की भावनाएं क्या है कलाकारों के प्रति वह हम सुनेंगे। आमंत्रित करती हूँ प्यारी मुन्नी बहन जी को।
ओम शांति। आज इस रजत जयंती महोत्सव की समाप्ति समारोह में आप सभी आए हैं। मैं अपने दिल से मुबारक देते हुए आप सबका स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज ये आर्ट एंड कल्चरल विंग 25 साल का सफर पूरा करके यहाँ पर पहुंची है। इस विंग की स्थापना में जो हमारी वरिष्ठ बहन उषा जी थी, जो आप यहाँ रमेश भाई जी को देख रहे हैं, जो कमल पुष्प समान गृहस्थी कैसे रहे, जीवन कैसे रहे, उसका मिसाल है, इनकी लौकिक वाइफ थी। उन्होंने इस विंग की स्थापना की और इतना इस विंग को आगे बढ़ाया और सारे विश्व में इसकी सेवाओं को फैलाया। तो उनको भी आज हम नहीं भूलेंगे, जिन्होंने इतना सुंदर कार्य इस विंग के प्रति किया। तो ये विंग आज इतनी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करते हुए यहाँ तक पहुँची है, तो मेरे दिल की बधाइयाँ स्वीकार हो, स्वीकार हो। बाकी आर्ट एंड कल्चरल हमारे जीवन का सबसे बड़ा विशेष गुण है। सबसे बड़ा आर्ट क्या है? सबसे बड़ा आर्ट यही है तो मनुष्य मनुष्य से देवता बन जाए। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे सो लक्ष्मी बन जाए। ये आर्ट कौन सिखाता है? ये आर्ट स्वयं परम पिता परमात्मा ही आकर के हमको सिखाते हैं। जो आज यहाँ हजारों लोग, लाखों लोग इस आर्ट को सीख करके अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना करके और देवी देवता बन रहे हैं, नर नारायण नारी लक्ष्मी बनने का पूरा प्रसारत करते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं हम इनके जैसा बन सकते हैं क्या, लेकिन हम भी इनके जैसा बन सकते हैं, वही यहाँ पर सिखाया जाता है। तो मैं तो ये कहूँगी, मेरी ये शुभ भावना शुभकामना है, तो आप यहाँ पर आए हो, इतने अच्छे स्थान पर आए हो, तीर्थ स्थान पर आए हो, तो यहाँ से आप कुछ लेके जाओ, कुछ छोड़ के जाओ। छोड़ के क्या जाएंगे? जो अपने अंदर बुराइयाँ हैं, कमियाँ हैं, वो इस तीर्थ स्थान पर छोड़ेंगे। दृढ़ संकल्प करेंगे हमको सदा काल के लिए परिवर्तन होना है। और लेके क्या जाएंगे? जो यहाँ आपको राजयोग के द्वारा सिखाया जाएगा, तो आप नर नारायण नारी लक्ष्मी कैसे बने और सर्व गुण संपन्न आपका जीवन कैसे बने, वो आप अपने साथ लेकर के जाएंगे। तो ऐसी मेरी शुभ भावना है आप सबके प्रति। आज इस संस्था में मैं 48 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। बहुत छोटी उम्र की थी मैं तब यहाँ आई, और दादी प्रकाश मणि जी जो संस्था की हेड रहे 69 से 2007 तक, उनके साथ मैं कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला करके 20 घंटा मैंने अपने जीवन में सेवा की। हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्य किया उन्होंने, मुझे हर छोटा कार्य बड़ा कार्य सब सिखाया। दादी जी संस्था की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे, उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया। जो कुछ नया दीदी ने अभी वर्णन किया, वो हम प्यारे बाबा की बदौलत और प्यारे दादी जी की बदौलत है। हमें कुछ नहीं आता था, लेकिन हमने सब कुछ सीखा उनके साथ रह के। तो दादी जी के जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा। कभी उनके अंदर अहम नहीं था, अहंकार नहीं था, निर्माण चित्त, निमित भाव, निर्मल वाणी। दादी जी ने सबसे दादी जी के अंदर हमने सबसे बड़ा यही विशेषता देखी, तो हमेशा अपने को निमित्त समझा। तो मैं भी आप सबसे यही कहूंगी, सदा अपने को निमित्त समझो। करण करावन आर भगवान है, हम निमित्त हैं, निमित्त बन के कार्य कर रहे हैं। अगर अपने को निमित्त समझेंगे तो कभी भी कोई टेंशन हमको नहीं होगा। और निर्माण चित्त, निर्माण रहना है, छोटा हो या बड़ा हो हर एक को रिगार्ड देना है, निर्माण चित्त होकर के रहना है, सबको सम्मान देना है और खुद स्वमान में रहना है। तीसरा, अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखनी है, ये दादी जी से हमने सीखा। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोच कर बोलो, ये बातें हमने प्यारी दादी जी के जीवन में देखी, उनसे सीखी और अपने जीवन में अपनाई। और आज मैं आपको गिफ्ट रूप में यही तीन सौगात दे रही हूँ जो आप अपने साथ लेके जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा आर्ट है जो अपनी लाइफ को टेंशन फ्री रखना और अपनी लाइफ को इन गुणों से संपन्न करना, ये भी आर्ट है, सुख शांति में जीवन बिताना। इसके लिए भी हमको सोचना चाहिए हमारी लाइफ सुख शांति में कैसे बीते। वही बातें आपको यहाँ सिखाई जाती है, तो हम टेंशन फ्री कैसे रहें, सुख शांति में जीवन कैसे बिताएं, देवता समान अपनी जीवन कैसे बिताएं, ये बड़ा आर्ट आप यहाँ से सीख के जाना। मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा पिता कौन है, परम पिता परमात्मा है, हम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं और हमको क्या करना है और किस प्रकार हमको शांति में रहना है, टेंशन फ्री रहना है। तो जो यहाँ सिखाया जाता है आप 3 दिन में ध्यान दे करके एक्यूरेट सुनेंगे, सीखेंगे, तो लास्ट में आप अपने को समझेंगे मैं बहुत कुछ लेके यहाँ से जा रहा हूँ और भरपूर होके जा रहे हैं। ऐसी मेरी शुभ भावना और शुभ कामना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नी बेन जी, आपने कम शब्दों में भी बहुत बड़ी शिक्षाएं हमारे सामने रखी। जिन शिक्षाओं को हम अपने साथ लेकर चलेंगे तो जीवन रूपी यात्रा को हम सफलता पूर्वक आगे बढ़ा सकेंगे। आपका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कुसुम बेन जी को। आपसे आप कल भी मिले हो, आप हमारे कला और संस्कृति विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में बहुत सुंदर सेवाएं दे रहे हैं। वैसे आप चंद्रपुर गढ़चिरौली क्षेत्र की क्षेत्रीय संचालिका के रूप में सेवाएं भी दे रहे हैं। ईटीवी मराठी चैनल में जितने भी कार्यक्रम आ रहे हैं आप उसके डायरेक्टर के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। आपका पहले से ही कला और संस्कृति से बहुत ही प्यार रहा है और कैसे कला को मूल्यनिष्ठ बनाया जाए इसके पीछे आप बहुत ही अपना समय देकर छोटे छोटे कलाकारों से लेकर बड़े कलाकारों को बहुत ही उत्साहित करके उसकी कला को ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं और इस विंग की सेवाओं को भी आप अपने उमंग उत्साह से बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। आपके दिल के उमंगों को हम सुनेंगे, तो आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी कुसुम बेन जी को।
ओम शांति। आदरणीय परम स्नेही हमारी प्यारी दादी जी, प्यारी मुन्नी बहन जी, वरिष्ठ भ्राता हमारे रमेश भाई जी तथा सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित मेरा कलाकार वर्ग, तथा सभी प्यारे भाई बहनों, आज का हम सभी के लिए बहुत ही हर्षपूर्ण ये मौका है, कार्यक्रम जो आज का है रजत जयंती के उपलक्ष में ग्रैंड फिनाले के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। आप सभी सुनते आए हैं, जो हमारा हर कलाकार, वैसे तो संसार के अंदर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, हम सभी कलाकार हैं और हम सभी कलाकारों का परम कलाकार वो परमात्मा शिव है, जिन्होंने यहाँ इस धरा पर हमें हर कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, सुख शांति से अपना जीवन बिताने के लिए, औरों के अंदर प्रेम की धाराएं बहाने के लिए, आपस में प्यार का संबंध रखने के लिए, हरेक के साथ अच्छी तरह से अपना व्यवहार करने के लिए यहाँ पार्ट अदा करने के लिए भेजा है। ये हम सभी जानते हैं कि जैसे एक दिन हम इस धरा पर आए हैं, वैसे इस धरा से एक दिन हमें जाना भी है। जैसे यहाँ हम अपना रोल आज कला के रूप में, चाहे वो कोई भी कला हो, हम स्टेज पर अदा करते हैं, पब्लिक देखती है, तालियां बजाती है, हमें आनंद आता है, हमें उत्साह आता है, हमें उमंग आता है और सर्व का मनोरंजन भी हो जाता है। लेकिन अभी तक सभी वक्ताओं से आप यही सुनते आ रहे हैं कि एक ऐसा विशेष मंच है कि जहां से आपको जो भी आप कला से जुड़े हुए हैं, उस कला के अंदर आप कैसे दैवी मूल्यों को भरे, ईश्वरीय मूल्यों को भरे तथा ईश्वरीय शक्ति की आप अपने अंदर कैसे प्राप्ति करें और इन्हीं लक्ष्य को लेकर के आप सभी को यहाँ बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है। आज से, आज भी सवेरे एक सत्र हुआ होगा आपका और जो हमारा राजयोग का सत्र चलता है उसके अंदर बहुत सी बातें आपने को सीखने को मिलेगी और सबसे बड़ी जो कलाओं की बात हो रही है, नर से नारायण शब्द सुना, नारी से लक्ष्मी शब्द सुना, देवताओं की कलाओं के बारे में सुना, लेकिन ये सारी कलाएं देवताओं के अंदर भी कब आई थी, उन्होंने वो कहां से निर्माण की थी, जब उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर परमात्मा प्राप्ति की थी, परमात्मा के द्वारा सर्व शक्तियों को प्राप्त किया था और सर्व शक्तियों की जो प्राप्ति है उसका माध्यम है जो हमें परमात्मा शिव बाबा यहाँ राजयोग की शिक्षा देते हैं। तो राजयोग से वो सर्व शक्तियां, सर्व प्राप्तियां उसकी अनुभूति आत्मा करती है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कला, जो सभी कलाओं को जन्म देने वाली कला कहो या सर्व कलाओं से भरपूर बनने की कला कहो या सर्व कलाएं दिव्यता के आधार से अपने लाइफ में धारण करने की कला, जो कलाओं का स्रोत निर्माण करती है, ऐसी सर्वश्रेष्ठ परम कला वो है जिसको हम राजयोग कहते हैं। और वो राजयोग यहाँ आप सभी कलाकारों को 3 दिन सवेरे सिखाया जाएगा, वो सत्र होगा और कोई भी वो मिस न करे, ताकि जिस लक्ष्य को लेकर के आप यहाँ आए हैं उसका आप पूरा लाभ उठाएंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। क्योंकि आप सभी ने अपनी कलाओं के द्वारा संसार के हर मानव को हंसाया है, उनको उनके मन को मनोरंजन दिया है। लेकिन आज का ये विषय है कि उस कला के अंदर आध्यात्मिक मूल्य, ईश्वरीय मूल्य हम समाज के सामने अपनी कला के द्वारा कैसे रखे, क्योंकि आपको ये बहुत बड़ा परमात्मा ने चांस दिया हुआ है, जो मंच दिया हुआ है कलाकारों के लिए, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो कोई भी स्टेज हो, आप जब पब्लिक के आगे जाते हैं, स्टेज पर अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं, उस टाइम अगर एक सेकंड उस परमात्मा पिता को अपने दिल में अपने मन में समाते हुए, अगर आप अपनी कोई भी कला हो उसका अगर आप प्रदर्शन करेंगे, तो हम अपने निजी अनुभव के आधार से आपको कहते हैं कि आपकी वो कला इतनी उन्नति करेगी, इतनी तरक्की करेगी, आपने कभी अपने मन में सोचा भी नहीं होगा उसके बारे में। ऐसे कई मिसाल, कई अनुभव हमारे पास कई कलाकारों के हैं, हमारे निजी भी हैं। इसीलिए आप सभी भाई बहनों के प्रति यही शुभ भावना मैं करती हूँ कि आप यहाँ से जो भी अच्छी अच्छी बातें, मूल्यों के विचार सुन रहे हो, इन विचारों को अपने साथ रखें और साथ साथ राजयोग के माध्यम से ईश्वरी शक्ति का अपने जीवन में एहसास करें, परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़कर, उसको सच्चा पिता मानकर, उसके द्वारा शक्तियों की अनुभूति करें, ताकि वो शक्तियां आप अपने कला के द्वारा समाज के सामने बिखर सको, ताकि वो परमात्मा की दुआएं आप अपने जीवन में भी प्राप्त कर सको। क्योंकि हर मानव क्या चाहता है, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो साधारण कोई भी हो, लेकिन हरेक के जीवन में वो सुख शांति चाहता है, और सुख शांति के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए वो कोई ना कोई कला से जुड़ जाता है, या तो कोई कला देखने के लिए चला जाता है। और ये आपके पास खूबी है, आपको ये चीज परमात्मा ने दी हुई है दुनिया को हंसाने की, दुनिया को खुशियां लुटाने की। उसके अंदर अगर आप दिव्यता की खुशबू भरेंगे, आध्यात्मिकता की खुशबू भरेंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि जो अभी हम स्वर्ग की बातें सुन रहे हैं, स्वर्ग आने वाला है, स्वर्ग आने वाला है, ये स्वर्ग आने के लिए देरी नहीं लगेगी। आप सभी भी इस कार्य के साथ अपने कलाओं के द्वारा जुड़ जाओगे, तो जल्दी से जल्दी यह भारत भूमि फिर से स्वर्ग भूमि कहलाएगी, और हम मनुष्य आत्माएं, हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा हम भी देवी देवता पद को प्राप्त करेंगे, और अपना जीवन अच्छी रीति से, पवित्रता से संपन्न जीवन व्यतीत करेंगे देवता के रूप में। क्योंकि देवताएं हमारे से और कोई अलग नहीं थे, हम ही थे। जैसे आप सुन रहे थे कि केवल भारत देश के लिए ही कहा जाता है कि भारत स्वर्ग था, और कोई भी देश के लिए गायन नहीं है कि अमेरिका स्वर्ग था, जापान स्वर्ग था, नहीं, हमारा भारत देश स्वर्ग था। और फिर से वो स्वर्ग बनाने के लिए परमात्मा शिव हम सभी के बीच, दादी जी ने बताया कि गुप्त रूप में, साधारण तन में आकर के कैसे कार्य कर रहे हैं, तो उसके इस दिव्य कार्य को आप सभी 3 दिन अच्छी तरह से अभ्यास करो, अच्छी तरह से समझो, और आप भी अपने कला के अंदर इन चीजों को भर करके और अपनी कला को अच्छी तरह से प्रदर्शित करो। क्योंकि एक होता है केवल प्यार करना किसी बात के साथ, किसी कला के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी चीज के साथ, लेकिन एक होता है समझ से प्यार करना, उस प्यार की भी समझ हो। उसी प्रकार कला की समझ तो आपके पास है, वो मैं नहीं कहूंगी, समझ है तब तो आप कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा प्यार अगर उसके साथ जुड़ जाएगा, उस कला में निखार आ जाएगा, वो कला संसार के लिए एक वरदान साबित हो जाएगी। और इसीलिए आज मैं आप सभी के प्रति
यही भावनाएं रखना चाहती हूँ कि आप अवश्य ये कार्य करेंगे, परमात्मा पिता को इतना अपनी कलाओं के द्वारा सहयोग देंगे कि जो भी कला है उस कला के साथ आध्यात्म को जोड़ेंगे, राजयोग का खुद अभ्यास करेंगे तथा औरों के अंदर भी उन चीजों को भरने का प्रयास करेंगे। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देती हूँ शब्दों को, लेकिन ये अवश्य विनंती करूंगी कि आप सभी यहाँ से राजयोग की कला बड़े दिल से बड़े प्रेम से अवश्य सीखकर जाएंगे और अपने जीवन के अंदर इसका एहसास करेंगे और खुशियों को प्राप्त करेंगे। ओम शांति।
धन्यवाद हमारे आदरणीय कुसुम बेन जी, अपने कलाकारों को बहुत सुंदर आह्वान किया अपनी कला को उजागर करने के लिए। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे सामने और एक विशिष्ट प्रतिभा को, हमारे आदरणीय ब्राता प्रदीप चौबे। आप भी एक बहुत जाने माने कवि हैं और ग्वालियर से आप पधारे हैं। आपने बहुत सारी गजल, छोटी कविताएं, हाशिय व्यंग गजलें भी लिखी हुई है। आप साहित्यकार भी हैं, आपने दो बहुत सुंदर पुस्तकें लिखी हुई है, बहुत प्यासा है पानी और बाप रे बाप। और आप में एक बहुत अच्छा कला का रस है, जो रस ऐसा है कि इंसान में शक्ति ला देता है और दुखों को भुला देता है, वो है हास्य रस। तो आप हास्य कवि भी हैं और लोकप्रिय हास्य कवि हैं। आपकी इस हास्य कला को लेकर के हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा आपको लोकप्रिय हास्य कवि के रूप में सम्मानित किया गया है और प्राप्त है। तो आपका हम बहुत बहुत दिल से अभिवादन करते हैं और निवेदन करूंगी कि आप भी अपने दिल की भावनाओं को हमारे सामने रखेंगे, आदरणीय ब्राता प्रदीप चौबे।
मैं भी आपकी सभा में ओम शांति कहना चाहता हूँ। मैं ग्वालियर से यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया हूँ और पहली बार मुझे ये स्वर्गालोकन करने का मौका मिला है। मैं कल से यहाँ पर हूँ और स्वर्ग की कल्पना करना बड़ा कठिन होता है। कई लोग ऐसा बांधते हैं कि स्वर्ग होता ही नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर वो होता होगा तो वैसे ही होता होगा जैसे यहाँ का कैंपस है, जैसे यहाँ का वातावरण। मैं हास्य कवि हूं बताया गया है और हास्य कवि सम्मेलन में जाना मेरा व्यवसाय भी है, काम भी है, इसलिए इस प्रकार की सभाओं में विचार को प्रस्तुत करने की ऐसी कला मेरे पास में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि लोगों से अभी आपने पूर्व वक्ताओं से अच्छी अच्छी बातें सुनी और वैसे भी मेरा स्वभाव दूसरा हो गया है साहब। 35-37 साल से मैं काव्य मंचों पर हूं और पहले मैं बड़ी लंबी लंबी कविताएं सुनाता था, लंबी लंबी बात करता था। अब मैं वैसा नहीं करता क्योंकि एक शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है, उसका मजा लीजिए। बड़ी गहरी बात है, आपकी सभा में सुनाना चाहता हूं। उनका नवाज देवबंदी एक शायर हैं उत्तर प्रदेश के, बहुत अच्छी बात कही है और शायद उपयोगी बात भी है ये कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। शायर यही काम करता है, कवि यही काम करता है, दो चार पंक्तियों में सुना करके अपनी बात कहता है, सार गर्भित होती है। तो मुझे इस तरह से लंबी बात करना तो नहीं आएगा, लंबा लेक्चर देना पड़े। कला को लेकर के उन लोगों ने कला पे बहुत अच्छी बात कही है जो कला की दुनिया में नहीं है। अलबत्ता वर्षा उसकांवर जी बहुत अच्छी अभिनेत्री आप जानते हैं, कमलेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही, अपनी बातें कही। मैं भी कुछ आपके सामने करना चाहता हूं, लंबी लंबी बात करने का आदि नहीं हूं। मुझे याद है कि एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी तो उसकी लंबी कविता सुनकर के एक वीआईपी चल बसा, वही लंबा हो गया, उस पर हत्या का मुकदमा चला। जज ने कहा कि तुम्हारी लंबी कविता से एक आदमी लंबा हो गया है, तुमको फांसी का मुकदमा होने वाला है, मैं ही फांसी देने वाला हूं, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कवि बोला कि साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो ऐसा कोई प्रकोप यहाँ पर नहीं होगा। मैं लंबी लंबी कविताएं जरूर सुनाता हूँ, लेकिन मंचों पर कवि सम्मेलन में यहाँ पे विचार का मामला है, कला की बात की जा रही है। जितनी घबराहट हिंदुस्तान में कला को लेकर के होती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में कला प्रचुर मात्रा में है। हिंदुस्तान है ही कलाकारों का देश। आपको घर घर कलाकार मिलेंगे और संघर्ष अपने संघर्ष में रहते हैं, जैसा कि कमलेश जी ने बताया, उस बात पे आपको ध्यान देना चाहिए था। आज वर्षा उस गांव का जिस मुकाम पे है, क्या वो इतना आसान था? बंबई में रह के देखिए, अमिताभ बच्चन जहां पर हैं, लता मंगेशकर जहां पर हैं, क्या वो इतना आसान है? सारी जिंदगी कलाकार दो तरह से पिसता है, चटनी की तरह भी और मेहंदी की तरह भी। हालात उसको बंबई शहर लोगों को चटनी की तरह पीसता है कलाकारों को, तब जाकर के वो मेहंदी का रंग दे पाता है, क्योंकि सारी जिंदगी पिसता है। ये बात मैं, मेरा कोई अनुभव नहीं है, मेरा बंबई कोई, अलबत्ता मेरे बड़े भाई बहुत बड़े देश के कलाकार थे, शैल चतुर्वेदी का नाम आपने जरूर सुना होगा, हास्यरस के बड़े कवि थे, फिल्मों में काम किया, बंबई में रहते थे, उनके संघर्ष मैंने देखे हैं। मैं तो गाड़ी में रहता हूं और छोटी जिंदगी का बड़ा मजा लेना चाहता हूं। तो इस तरह की बात है, फोटोग्राफर था, फोटो लेते हैं, उनका काम ही लेना फोटोग्राफ है। मैं एक ऐसे फोटोग्राफर को जानता हूं जो हमेशा शादी ब्याह के फोटो खींचता था। एक बार उसकी ड्यूटी शमशान में लगी, उसका अभ्यास नहीं था, तो जैसे ही उसने मुर्दे के चेहरे पे अपना कैमरा फोकस किया, आदतन उसके मुंह से निकला स्माइल प्लीज। ऑफर इतना जोरदार था कि मुर्दा भी मुस्कुरा दिया। अंजाम यह हुआ कि मुर्दा तो मुस्कुरा रहा था, फोटोग्राफर साहब पड़े हुए थे। बस मैं आपको कला की बात करता हूं, मैं ये सब आपको नहीं सुनाना चाहता, वो तो शाम को कभी सम्मेलन है, अगर आप लोग तब तक रहे, मेरा मतलब कार्यक्रम में रहे। असल में हास्य कवि को लोग गलत समझ जाते हैं, प्रॉब्लम ये है, कोई मुझे ठीक से समझना नहीं चाहता है। मेरी बीवी ने एक बार मुझसे पूछा कि तुम कविता कैसे लिख लेते हो। मैंने कहा इसमें दिमाग लगता है, वो बोली तभी तो पूछ रही हूं। तो ये हास्य की मुसीबत, मैं कला की बात करता हूं। नहीं, ऐसी की बात नहीं, स्वर की बात कर रहे हैं भाई साहब। स्वर पूछा गया था, भी दादी ने पूछा था कि स्वर्ग में विश्वास है, तो एक सभा में लोग बैठे हुए थे, तो ऐसे ही पूछा गया कि स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है, तो वहां पर सभी पुरुष थे, एकमात्र महिला उस सभा में थी। स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है, उठकर इधर आ जाए, तो सारे पुरुष उठे जाके बैठ गए, वो महिला अपनी जगह बैठी रही। तो उन्होंने पूछा कि तुम स्वर्ग में नहीं जाना चाहती, तो उसने कहा कि अब खुद ही मेरा स्वर्ग स्वर्ग हो जाएगा, जो लोग चले गए हैं वो चले गए हैं, अब ये स्वर्ग ही है जाम बैठ। तो स्वर्ग की कल्पना अच्छी बात है, लेकिन साहब मुझसे पूछा गया, एक बार मेरी बातों को वैसा न लिया जाए, मैं हास्य कवि हूं तो मैं जरा तिरछा सोचता हूं। एक यमदूत मुझे मिला, बोले कि आप स्वर्ग जाना चाहेंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। फिर कहा, मैं कहता नर्क में भेज दो, वहां सुनने वाले तो मिलेंगे, स्वर्ग में गांधी जी होंगे, विवेकानंद होंगे, मदर टेरेसा हो सकती है, ये लोग मुझसे बहुत काम कराएंगे वहां पे। हास्य कवि तिरछा सोचता है, लेकिन जो कुछ भी सोचते हैं हम लोग कला के आसपास सोचते हैं। मैंने आपको शेर सुनाया कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, वरना ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। चाहे कवि हो नाटककार हो, बड़ा मुश्किल काम होता है साहब, नाटक सबसे कठिन विधा मानता हूं मैं मंचों पर, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है। अच्छी बात कही उन्होंने कि पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बल्कि मैं तो एक बात ऐड करता हूं कमलेश जी आपकी बात में, कि पैसा मिलना क्या चाहिए, पैसा आपको लेना चाहिए तब मिलेगा। ऐसे आर्टिस्ट को पैसा कोई देता नहीं, सिद्ध करना पड़ता है योग्यता, तब जाके पैसा मिलता है, पैसा मिलना चाहिए ताकि कलाकार फले फूले। लोग करते हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, बड़े बड़े कलाकारों को, साहित्यकारों को, कि उनको अपने 70 साल की उम्र में सरकार पुरस्कार देती है, जब वो किसी और के काम में आ सकता है। उसकी जवानी में जब उसका क्रिएशन का टाइम था, तब उसको पुरस्कार दो ताकि वो अच्छा काम कर सके, पुरस्कार उसको देते हैं, बच्चे मजे कर। मैं खांटी बात करता हूं, मुझे बोलना नहीं आता, जीवन के अनुभव है, इसलिए मैंने आपके सामने अपनी बात हंसते हंसते सुना दी। क्योंकि बात करने का एक कला ये भी है साहब, एक कला ये भी, भाषण सबसे बड़ी कला है, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं। लेकिन इस भाषण में छौक तब लगता है जब आप लोगों का मन लगाएं, मन लगाना एक कला है। एक बहुत बड़े साहित्यकार बहुत देर से बोल रहे थे, एक गहरी बात और सुनाता हूं मैं। एक बहुत बड़े साहित्यकार किसी साहित्यिक सभा में बड़ी देर तक बोल रहे थे, सामने से एक श्रोता उठा, छोटा सा आदमी, बोला साहब काफी बोल चुके, अब आप अब कुछ कहो भी। क्या बात कही उसने, काफी बोल चुके हैं आप, अब कुछ कहो भी। चुप हो गए बेचारे, क्या पता। इसलिए बड़े से बोलना चाहिए। कभी बड़ी देर तक कविता पढ़ता रहा, कवियों की आदत है, देर तक लग जोश में उसने डेढ़ घंटे कविता पढ़ दी। लोगों ने तालियां बजा दी, वो समझ गया कि हूट कर रहे हैं। तो बोले साहब माफ करना, आज मैं घड़ी बांध के नहीं आया था, इसलिए समय का ध्यान नहीं रहा। तो एक बोला कि पीछे लगा कैलेंडर ही देख लेता। कम बोलो मगर बम बोलो। मैं सबसे कहना चाहता हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूं, मैं हर बोलने वाले से कहना चाहता हूं कि बोलने के पहले सोचो कि तुम बोल क्या रहे हो। कम बोलो मगर बम बोलो। हालांकि मैं खुद ही बोल रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूं। कल आप इतनी बात की, अध्यात्म का केंद्र है ये प्रजापति विश्वविद्यालय। यहां का तो सर्रा सर्रा बोलता है, पत्ता पत्ता बोलता है। मैं कल से बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूं, और अब तक मुझसे गलती हुई है कि मैं कैसे नहीं आ पाया। दिलीप भाई हमारा ग्वालियर का जो समर्पित आपके यहां का है, वही मुझे 4 साल से कोशिश करता था, परंतु वही मुसीबत होती है कि मुझे समय मिलता नहीं। परंतु इस बार मेरा भाग्य यहां लिखा था तो मैं यहां पर आया हूं। मैं इस पूरे सभागार में, इस पूरे संस्थान में सबसे बड़ी क्रेडिट दिलीप भाई को देना चाहता हूं कि जो मुझे यहां पर ला सका, उसने प्रेरित किया और मैं आप लोगों के बीच में आ चुका। बहुत बहुत धन्यवाद, लोगों को सुना, आप सबका स्वागत करता हूं कलाकार की हैसियत से। और फिर मैं 4 पंक्तियां एक बहुत बड़े कवि की सुनाना चाहता हूं। मैं अपनी कविताएं बहुत कम सुनाता हूं वंशज, क्योंकि वो कविताएं नहीं है, वो तो बस ये है और वो है और वो है। लेकिन मैं इस सभा में राधे श्याम प्रगल्भ हमारे देश के बहुत बड़े कवि हुए हैं, बहुत बड़े कवि, और केवल 4 पंक्तियों में जो मैसेज उन्होंने दिया है वो इस सभा में जरूर मैं पेश करना चाहता हूं। सब लोग सुने, आत्मसात करें। इस आध्यात्मिक केंद्र में यही पंक्तियां ज्यादा सार्थक हो सकती हैं, राधे श्याम प्रगल्भ जी की। के दिन के उजेले में न ऐसा कोई काम करो, दिन के उजेले में न ऐसा कोई काम करो, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में। दिन के उजेले में न ऐसा कोई काम करो, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में। रात के अंधेरे में न करो ऐसा कोई काम, मुंह को छुपाना पड़े दिन के उजेले में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई जी, आपने तो अपनी कला के द्वारा सभी के दिल दिमाग में खुशी का एक माहौल बहुत अच्छी तरह से फैला दिया। आपकी कला का प्रत्यक्ष पुरावा भी आपने दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम थोड़े समय के लिए इस आवाज की दुनिया से कहीं दूर जाने का अनुभव करेंगे। जो भी हमारे आदरणीय दादी और हमारे महान वक्ताओं की बहुत ही गहरी बातों को हमने सुना, अब चंद क्षणों के लिए उन बातों का गहराई से अनुभव करेंगे। और इस अनुभूति कराने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय राजयोगिनी तृप्तिबेन जी को, जो भावनगर से पधारे हैं। आप भी पिछले 45 वर्षों से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं गुजरात में, और हमारे हेडक्वार्टर में कई प्रकार के सेमिनार, लेक्चर्स, राजयोग शिविर के द्वारा अपने अनेकों को लाभान्वित किया है। वर्तमान समय भावनगर सब जोन के इंचार्ज के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं, और हमारे गुजरात के आर्ट एंड कल्चर विंग के आप कोऑर्डिनेटर के रूप में भी सेवाएं देते हैं। तो अब तृप्तिबेन से निवेदन करूंगी कि हमें उस अंतर यात्रा का अनुभव कराएंगे। तृप्तिबेन
ओम शांति। परम कलाकार, दिव्य बुद्धिदाता, सर्वशक्तिवान, सर्व मूल्यों का सागर, शिव पिता की श्रेष्ठ रचना, आदरणीय दादी जी जो दिव्य अस्त्र शस्त्रधारी है, हमारे वरिष्ठ भाई आदरणीय रमेश भाई जी जो यहाँ विराजमान है, आप सब अनुभव करते होंगे के एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी, बहुमुखी पर्सनालिटी है और हमारी आदरणीय कुसुम बहन एवं सर्व मंचासीन महानुभाव, सभा में उपस्थित आप सर्वश्रेष्ठ कलाकार भाई और बहने, हमारी भारत की भारतीय संस्कृति जो है, जो प्राचीन है, सर्वश्रेष्ठ है, दिव्य है, उसको फिर से इस धरा पर लाने के लिए हमारा प्राचीन योग यही एकमात्र साधन है और राजयोग सर्व कलाओं का सिरमौर है। कई प्रकार के कर्म हम साधारण रीति से करते हैं, जैसे छोटा बच्चा कागज पर लकीरें ड्रॉ करता है, लेकिन एक आर्टिस्ट भी लकीर ड्रॉ करता है, चित्र बन जाता है। हम कदम उठाकर चलते हैं, लेकिन नट भी रस्सी पर चलता है तो बैलेंस की कला हो जाती। मुख से आवाज निकालते हैं, लेकिन जब वो आवाज एक विधिवत होती जिसमें मेल होता तो एक कला बन जाती है, गीत संगीत नृत्य आदि जो हम देखते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी अपनी मन की बहती हुई शक्तियों को एकाग्र करके गीत और संगीत में डाला, हम सब मनोरंजन अनुभव करने लगे, लेकिन आज मनोरंजन रह गया है, एकाग्रता चली गई है। हमारे तानसेन जैसे कलाकारों की भी बात सुनी कि कितनी उनमें शक्ति थी, जो शब्द उनके जो गाता था, राग गाता था, मलार राग और बारिश गिरती थी, दीपक राग से दीप जल जाते थे। आज है ऐसे कोई कलाकारों में शक्ति? कहां गई वो शक्ति, कहां गई वो एकाग्रता? जो मन को कंट्रोल कर सकता वो प्रकृति को भी कंट्रोल कर सकता है। आज हम जो सोचने की कला है, जो आगे बताया राजयोग सिरमौर है, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप सब व्यवस्थित सीधा बैठ जाइए अपनी अपनी सीट पर, रिलैक्स होकर के बैठेंगे। हम महसूस कर रहे हैं इस हॉल में कई दर्शनीय चीजें हैं, स्टेज भी है जिस पर हम महानुभावों को देख रहे हैं, संगठन में अनेकों के साथ बैठे हैं ये भी महसूस करते हैं, फिर भी अपना अटेंशन अभी स्वयं की ओर रखना है, स्वयं को देखना है, स्वयं की एक अलग पहचान है। बाह्य स्वरूप को देखेंगे, ये देह शरीर एक मंदिर है, मैं पूजनीय मूर्ति आत्मा हूं, शरीर वस्त्र है, मैं इस वस्त्र को धारण कर रंगमंच पर पाइट बजाने वाली एक्टर हूं, शरीर रूपी गुफा में ब्रकुटी रूपी आसन पर विराजमान मैं योगी तू आत्मा हूं, स्वयं को अंदर में एक चमकता हुआ सूक्ष्म सितारे के रूप में देखे। सकारात्मक चिंतन द्वारा हमें एक ऐसे शांति के स्थान पर पहुंचना है जहां केवल मेरे ही विचार है, केवल मेरी ही भावनाएं हैं। ब्रकुटी के बीच मध्य में जो मेरा पर्सनल स्थान है, जो मेरी स्वयं की ही अलग दुनिया है, जितना जितना मैं स्वयं को इस स्थान पर एकाग्र करती हूं, उतना इस स्थान का प्रकाश बढ़ रहा है। इस प्रकाश में मैं अपने आप को देख रही हूं। इस प्रकाश का स्रोत मैं ही हूं। मैं अति दिव्य, सूक्ष्म प्रकाश पुंज हूं। शांत हूं, शुद्ध हूं। अब मैं दिव्यात्मा आवास की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में स्वयं को देख रही हूं। बड़ा हल्कापन महसूस हो रहा है। लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में नीरव शांति अनुभव हो रही है। इस प्रकाश की दुनिया में मैं अपने आप के सामने एक दिव्य सितारा जो बड़ा तेजस्वी है, जिस सितारे से अनेकानेक गुण और शक्तियां फैल रही है। वही तो मेरा प्यारा परम कलाकार परमात्मा है। परमात्मा के सानिध्य में मैं स्वयं को धन्य धन्य अनुभव कर रही हूं। जो दिव्य मूल्यों के स्रोत से फैली हुई दिव्यता मैं अपने में समा रही हूं। बड़ा अलौकिक अनुभव हो रहा है। इस गुण और शक्तियों को अपने में समाती जा रही हूँ। समाते जाओ, समाते जाओ। सर्वगुण और शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा अभी वापस अपनी साकारी दुनिया में इस साकार शरीर में मस्तक के बीच विराजमान होती हूँ। आप सभी अपने स्थूल नेत्रों को खोलकर स्टेज के सामने देखें। प्रखर योगी तू आत्माएं अपनी दिव्य शक्तियों को और गुणों के वाइब्रेशन को आपकी ओर प्रवाहित कर रहे हैं। आप अपने में परमात्म गुण और परमात्म शक्तियों को अपने में भरते जाएं, संपन्नता का अनुभव करते हुए शुभ संकल्प करें कि मैं आज यहां से इन दिव्य शक्तियों को और मूल्यों को लेकर अपनी कला को विश्व के आगे प्रस्तुत करूंगी या प्रस्तुत करूंगा, जिससे सारे विश्व की आत्माएं अपने में श्रेष्ठ और दिव्य संस्कारों को भरने की प्रेरणा लेंगे। मेरी कला के माध्यम से समझ भी लेंगे और शक्ति भी लेंगे। परमात्मा मुझ आत्मा से विशेष विश्व नव निर्माण का कार्य कराना चाहता है। अब तो मुझे इस कार्य में जरूर सहयोगी बनना ही है। ओम शांति शांति शांति।
धन्यवाद तृप्ति बेन जी, आपने आवास की दुनिया से पार जाकर अंतर जगत में जाकर परम शक्ति की दिव्य अनुभूति कैसे करनी है उसका प्रैक्टिकल अनुभव कराया और यही अभ्यास हमें दिन में बार बार करना है, जिससे आत्मा में दिव्य शक्तियां जागृत होती जाए। अभी कार्यक्रम समाप्त होने से पहले, आप सभी इतने लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं तो सभी का आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं अंत में आमंत्रित करती हूँ हमारे राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्राता सतीश भाई जी। आपसे तो आप कल से मिलते आए हो, आप पिछले 35 वर्षों से अपने जीवन को यही ईश्वरीय सेवा में समर्पित करके हेडक्वार्टर इस मुख्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप आर्ट एंड कल्चर विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और आपको शिव पिता की एक देन है कि आपको बहुत ही सुंदर परमात्मा की प्रेरणाएं प्राप्त होती है और आप तुरंत नए नए गीत लिखते हैं। करीबन 3000 जितने गीतों की आपने रचना की है और उसकी कई
कई सारी गीतों की सीडीज भी बाहर बनी हुई है, जिसके आधार पर परमात्मा को सभी याद करते हैं। तो आपको मैं निमंत्रण करती हूँ कि आप सभी का आभार प्रदर्शित करेंगे ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी।
आभार का भार इतना ज्यादा होता है, उसको ढूंढना आसान नहीं होता है, लेकिन कर्तव्य भार है, इसलिए आभार के लिए भी आप सबका आभार है। आभार का ये भार सहज ढो न सकेंगे, कागज की कश्ती सिंधु पार हो न सकेंगे, पत्तों के बाट से पहाड़ तोलें तो कैसे, पर कर्तव्य भार से उऋण भी हो न सकेंगे, कर्तव्य भार से भी उऋण हो न सकेंगे, आभार का ये भार सहज ढो न सकेंगे। सर्वप्रथम प्रभु कलाकार का करते हम आभार, जिसने बुलाया और सजाया कलाकारों का संसार, अवसर ये धन्यवाद का हम खो न सकेंगे, आभार का ये भार सहज ढो न सकेंगे, आभार का ये भार सहज ढो न सकेंगे। जरा तालियों के साथ अभिनंदन करें सबका। हमारे प्रिय भाई रमेश भाई जी बैठे हैं, प्रिय भाई रमेश जी ने अपने उद्गार किए प्रदान, अभी आप मेहमान बने फिर मालिक होंगे महान। वर्षा उस गांवकर जी ने सुनाई दिल की बात, बात सुनाई और तन मन की सब थकान मिट गई, जैसे ही वो यहाँ आई। भ्राता कमलेश जी ने कहा कला बिन जीवन अधूरा है, भ्राता कमलेश जी ने कहा कला बिन जीवन अधूरा, ऊंचे सोच और अच्छे कर्म से होगा लक्ष्य पूरा, ऊंचे सोच और अच्छे लक्ष्य से, ऊंचे कर्म से होगा लक्ष्य पूरा। परमादरणीय दादी जी ने प्रभु संदेश सुनाया, आशीर्वचन में ज्ञान रतन हम पर खूब लुटाया, करुणा भाई जी ने कलाकारों का किया है आह्वान, आओ अपने आदि भारत का करें पुनर्निर्माण, आए अपने आदि भारत का करें पुनर्निर्माण। पर शब्दों की सुई से इन महिमा की माला को पिरो न सकेंगे, आभार का ये भार सहज ढो न सकेंगे, आभार का ये भार सहज ढो न सकेंगे। मुन्नी बहन जी ने दादी जी का सहज दिया वरदान, नर बने नारायण और नारी लक्ष्मी समान, सदा स्वयं को निमित्त मानकर सदा रहे निर्माण, निर्मल वाणी रखते सबका सदा करें सम्मान, सदा करें सम्मान, सदा करें सम्मान। कुसुम बहन ने सर्वोच्च कला राजयोग बतलाया, आज जरूरत कलाकारों की सबसे बड़ी सुनाया, और कवि प्रदीप जी ने तो सबको जी भर खूब हंसाया, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें उनका। कवि प्रदीप जी ने हम सबको जी भर खूब हंसाया, और हंसते हंसते कला संस्कृति का है मर्म बताया, हंसते हंसते कला संस्कृति का है मर्म बताया। बहन पार्वती जी ने प्रकट किया शुभ भावना और शुभ कामना, ताकि मूल निष्ठ हम कला संस्कृति को फिर से बना सकें। और तृप्ति बहन जी ने हम सबको प्यारे प्रभु से मिलाया, आवाज से परे हमें उस लोक तक पहुंचाया। सबने ही अनमोल रतन से सजाया और संवारा, और मत पूछो कि ये प्यार अनुभव हमने कितना पाया। आते रहे हम कला संस्कृति प्रभाग का जिस तरह से समारोह मना रहा है, ऐसे मनाते रहें, मना रहा है, और आते रहें हम सब कला संस्कृति प्रभाग का जिसे मना रहे हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद हृदय हमारा गाया, धन्यवाद है, धन्यवाद हृदय हमारा गाया। आभार का ये भार सहज ढो न सकेंगे, कर्तव्य भार से वो अहम निभार हो नहीं सकेंगे, पत्तों के बाट से पहाड़ तोले तो कैसे, पर कर्तव्य भार से उऋण हो न सकेंगे। धन्यवाद, आभार, बार 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 बार।
सतीश भाई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुंदर रीति से आभार प्रदर्शित किया। अभी इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं, उसके पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए जिस प्रभु पिता की याद से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो उसी प्रभु पिता की याद से आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करेंगे। और उसके पहले मैं निवेदन करूंगी हमारी बहनों से कि प्यारी दादी जी के द्वारा हमारे मंचासीन मेहमानों का शोल और प्रसाद के द्वारा अभिवादन करेंगे। हमारे कमलेश भाई जी, दादी रतन मोहिनी जी के द्वारा शोल पहनाकर सम्मानित करते हैं। हम सभी कर्तव्य ध्वनि के द्वारा अभिवादन करेंगे। एक सुंदर यादगार मोमेंटो भी दिया जा रहा है जो सदा आपको अपने पिता के घर की याद देगा, और साथ में प्रसाद जिसको हम प्यार से टोली बोलते हैं। और हमारी बहन वर्षा जी का भी शॉल पहनाकर अभिवादन किया जाएगा। आपको भी दादी ये याद सौगात देती है कि आप बार बार अपने पिता के घर में आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।